दो ऑप्शन है, जब कर्मकांड होता है कर्मकांड के अनुसार खंडित डेटी को वर्षिप नहीं करते हैं, लेकिन वैष्णव पंथ के अनुसार खंडित डेटी भी वर्षिप की जाती है और वर्षिप करने जैसे हैं। तो ये प्रसंग हमारे साथ हुआ था, जो हमारे बस के डेटीज थे हमने कहीं रखे थे और पुजारी से वो डेटी नीचे गिर गए, डेटी ब्रेक हो गए, तो काफ़ी संघर्ष था, बहुत दुख हुआ था। दो तीन दिन तो पर्सनली मैं कंटिन्यूस हो रहा था और प्रसाद भी छोड़ दिया था, प्रसाद मैंने लोगा कुछ नहीं, जब तक डेटी वापस नहीं आएंगे तो कुछ करूँगा नहीं। तो गोविंद को बहुत डांटे, ये सब ऐसा कुछ प्रायश्चित वगैरह करना नहीं है। तो मैं महाराज को ईमेल लिखा, महाराज तुरंत दो दिन के अंदर ईमेल भी रिटर्न आया। तब महाराज ने बताया कि जो गुरु नेता है वाड़ा में है, तो महाराज ने तभी बताया कि कर्मकांड के अनुसार लेडी जब ब्रेक होते हैं, खंडित होते हैं, तो वर्षिप नहीं करते हैं, लेकिन जो वैष्णव के अनुसार, क्योंकि उनका जो भाव है वो भगवान को व्यक्ति समझ, कोई बिजनेस नहीं करें भगवान के साथ, तो वहाँ पे वैष्णव के लिए कोई नुकसान नहीं है, तो खंडित डेटी वर्षिप करते भी हैं तो ऐसे समय वर्षिप कर सकते हैं अगर इच्छा है। अगर इतना मतलब इतना ब्रेक हुआ है कि जोड़ना ही मुश्किल है और कुछ नहीं कर सकते तो विसर्जन कर सकते हैं, नहीं तो उनको वर्षिप कर सकते हैं। जैसे राधा माधव की डेटी जब डॉक्टरों ने पहले चुरा लिए गए थे, उसको कट किया था, अभी भी डेटी जिनमें ब्रोकरी में है रखा हुआ है। तो ऐसे समय अगर पॉसिबल है जोड़ के हम लोग उनको वर्शिप कर सकते। राधा राधा लंदनेश्वर उनका मिलिट टूटा हुआ था, तो जो फैमिली थी उन्होंने कहा कि हम लोग नहीं खंडित नहीं वर्शिप कर सकते। तो जब शिल प्रभुपाद को पता चला तो शिल प्रभुपाद अपने शिष्यों को लेके गए और लिटरली उनको भगा के लेके आ गए डेटीज को। राम कृष्ण महाराज और बाकी जो भक्त थे उन्होंने खाली बोला कि देखो आपको उठाने को जमता है क्या डेटीज, तो देखा तुम्हारा थोड़ा मैं उठा राधा को उठा सकता हूँ, हम इनको कृष्ण को उठा सकता हूँ। तो जैसे उठाने लगे उठा लिया तो मैं प्रभात करके चलो गाड़ी में रख दो, तो वो लोग जो फैमिली है वो कहते हैं कि हम लोग पहुँचा देंगे लेडीज को पहुँचा देंगे। प्रभात कहते हैं हाँ नो प्रॉब्लम वी कैन टेक देम। वो बुला रहे पीछे, प्रभात लेडीज को लेके गाड़ी में बैठ गए और सीधे निकल भी गए। तो प्रभात ने कभी इसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया। इसलिए पहले वैसे मैंने चरणामृत का भी जो बताया था, क्योंकि पर्सनल रिलेशन है डेडीज के प्रति, जो पर्सनल रिलेशन है उसके वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। खास करके जगन्नाथ डेटीज के बारे में, जब पेंट खराब होता है या कभी क्रैक्स भी आ जाते हैं ऐसा, तो उसमें लांबी वगैरह भर सकते हैं, पेंट भी कर सकते हैं, लेकिन खास करके जब ये स्नान यात्रा होती है, स्नान यात्रा से रथ यात्रा के बीच का जो समय होता है उसका जगन्नाथ डेटीज का खास करके उसका समय होता है, जो रिपेयर्स वगैरह जो करना है, पेंट करना है, रिपेंट करना है, जो भी करना है उस समय किया जाता है। तो इट्स द बेस्ट टाइम। और अगर आपके पहचान में कोई उभिशास से है जो पंडा वगैरह, उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि कैसे इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं, जो डेटीज बनाते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। लेकिन ये स्नान यात्रा से रथ यात्रा के बीच का जो समय है वो खास रिपेयर्स के लिए समय होता है।
पहले भी
अच्छा आपने बड़े रिलीज लिए हैं, छोटे टूथ पहले से हैं, तो किसी को अगर वर्शिप करने के लिए आवश्यक है तो उनको दे सकते हैं। अच्छा अगर आपको पॉसिबल है, इच्छा है, तो विसर्जन भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। लेकिन कोई यूजुअली कोई चाहते नहीं
उनको, नहीं
घर में अगर पॉसिबल है तो घर में रखना कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, घर में रख सकते हैं, बेस्ट है। नहीं तो फिर किसी कोई लोग हैं जिनको जरूरत है लेकिन दे कैनॉट अफोर्ड, लोग खरीद नहीं सकते ड्यूटीज, ऐसे कई अपने ड्यूटीज है जो सेवा करना चाहते हैं उनको भी दे सकते हैं। जैसे हमने बीच में वाड़ा में एक राधा कृष्ण के ड्यूटीज थे, छोटे से विग्रह थे, तो फिर वापस जब मंदिर के लिए बड़े विग्रह चाहिए तो उनके घर में वो बड़े विग्रह गए, तो छोटे विग्रह फिर वापस कोई अच्छे बहुत सिंसियर फैमिलीज थे तो उनको जब पूछा तो वेरी हैप्पी, तो वो लोग वर्शिप उनका वर्शिप करना शुरू कर दिया। ऐसे कर सकते हैं, अल्टर में कुंभ मेला नहीं बनाना चाहिए, अल्टर अपना स्टैंडर्ड अल्टर होना चाहिए जिसमें समझो घोर नेताएं हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो भी डेडीज हैं, मुख्य डेडीज हैं, उसके नीचे पंचतत्व नृसिंह होना चाहिए और नीचे परंपरा शोर गोस्वामी, इतना ही चीज़ अल्टर में होना चाहिए, बाकी नहीं। बाकी जो भी आप एक्स्ट्रा लाते हैं बेडरूम में रख सकते हैं, किचन के फ्रिज के ऊपर रख सकते हैं, फिर बहुत सारा घर में जगह रहता है तो वहाँ पे रख सकते हैं। अल्टर वो जगह नहीं है कि जहाँ पे बस कुंभ मेला जो भी जहाँ जहाँ यात्रा गए वहाँ वहाँ एक ही चीज़ लाते गए और करते गए, मुश्किल हो जाएगा और कुछ स्टैंडर्ड नहीं रहता। और फिर जब घर में ड्यूटीज आते हैं या मेहमान आते हैं तो वो भी वही स्टैंडर्ड लेके जाते हैं, किसी के घर में बाल गोपाल देखा फिर सब लोग लगता है मेरे घर में बाल गोपाल होना चाहिए, किसी घर में और दूसरा कुछ लकड़ी दिखाई दिया तो फिर वो फिर किसी के घर में वो शंख दिखाई दिया तो फिर शंख भी लेके आएंगे सब लोग, वो स्टैंडर्ड बढ़ते जाता है, कुछ भी स्पेकुलेशन चालू हो जाता है। सो बेस्ट स्टैंडर्ड इज डेडीज या जो मुख्य फोटो है उसके नीचे फिर आपका पंचतत्व नरसिंह देव रखो, परंपरा शिव गोस्वामी, सिंपल। इसलिए बताया कि जो घर में डीडीज लाते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते लेकिन स्वागत करते, और वो डीडीज कौन है, जो आपके जो मुख्य डीडीज जो मंदिर में हैं उनका उनके प्रतिनिधि घर में आए हैं, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में भगवान घर में आए हैं, तो उनका फिर वापस प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं, उनके प्रतिनिधि आ रहे हैं, तो वही जो सेवा भाव है या आप जहाँ यहाँ अर्पण कर रहे हैं तो भगवान वहाँ मंदिर में उसका स्वीकार कर रहे हैं। जैसे कि सरकार का जब गवर्नर का कोई असिस्टेंट आ जाता है उसको आप खुश करो तो गवर्नर खुश हो जाता है, आपके बच्चों को कोई मिठाई दे दे आप खुश हो जाते हैं, वैसे उनके प्रतिनिधि घर में आए उनको आप सेवा दे रहे हैं तो मंदिर में भगवान उसका स्वीकार करें, क्योंकि आपके आराध्य दैवत वहाँ पर है। अगर आप यहाँ पर पूरा दिन नहीं है सेवा नहीं करें घर में लेकिन मंदिर में कोई सेवा करने के लिए गए हैं फिर भी घर के ड्यूटीज में सेवा मिल रही है, क्योंकि मुख्य ड्यूटीज के आप सेवा करने गए हैं। ऐसा नहीं कि घर में ड्यूटीज आ गए तो फिर घर में सेवा करते बैठे फिर प्रोग्राम में जाने में टाइम नहीं है, मंगल आरती जाके करने में अटेंड करने में टाइम नहीं है क्योंकि अभी घर में भगवान आ गए, नहीं। आपको जो भी सेवा करने की शक्ति मिल रही भावना मिल रही है वो घर मंदिर के मुख्य ड्यूटीज है उनसे मिल रहे हैं, तो उनके जो प्रोग्राम्स है उनके जो उत्सव है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, वो वैसे चलते रहना चाहिए। तो अगर आप घर में नहीं है और वहाँ पे जाकर सेवा कर ले तो वहाँ पे सेवा करने से भगवान को सब कुछ सेवा घर में मिल रही है। जगन्नाथ मंदिर पुरी
के जो जगन्नाथ मंदिर सुभद्रा है और मायापुर के राजापुर में जो है ब्रिटिश, वो ब्रिटिश में थोड़ा डिफरेंस है तो अगर आपको जो मुझे पर्सनली राजापुर के टिकट अच्छे लगते हैं, तो वैसे टिकट हम घर का रखते।
कोई प्रॉब्लम, जैसे जगन्नाथ का स्वरूप है, अभी किसी के 3 फीट के हैं, उनके 10 फीट के, किसी के 4 इंच के हैं, लेडीज के। भगवान जो है अपने भक्तों के लिए जितनी भक्तों की भावना है उतने रूप में भगवान प्रकट होते हैं। जैसे एक बार जगन्नाथपुरी में एक पुजारी थे, वो भगवान को जब श्रृंगार कर रहे थे, श्रृंगार के बाद राजा रोज मंदिर में दर्शन करने आता था, लेकिन उस दिन आया नहीं। राजा ने अपने सेवक को भेजा, कहा कि प्रसाद ले आओ। तो पुजारी सेवक को भगवान का हार देता है और कुछ खाने का प्रसाद देता है। जब राजा के पास पहुंचते तो राजा वो हार भगवान का अपने मस्तक को स्पर्श करता है। जैसे स्पर्श करता है तुरंत उसे दिखता है कि हार में बाल है। तो बाल भगवान के किसी भी चीज़ में आना ये बहुत बड़ा अपराध होता है, ये बहुत निम्न स्टैंडर्ड हो जाता है, क्योंकि नाखून और बाल डेड मैटर है। डेड बॉडी को अगर हम स्पर्श करते हैं तुरंत आके स्नान करते हैं, अपवित्र होता है। वैसे बाल शरीर से अलग हो जाता है, डेड मैटर है। तो डेड चीज़ अगर है किसी भगवान के वस्त्र में या भोग में या कहीं भी स्पर्श हो जाती है तो बड़ा अपराध होता है। तो जैसे राजा ने देखा तो समझ गया कि जगन्नाथ के स्टैंडर्ड्स बहुत डाउन हो गए हैं, नीचे आ गए हैं, कि बाल भगवान के हार में आ गए हैं। सोचिए जो हार बनाने वाले को कितना सतर्क रहना चाहिए, भगवान के लिए जो भोजन बनाते कितना सतर्क रहना चाहिए। कभी भी अपने सर को खुला रख के हम लोग कुकिंग नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं बनाना चाहिए, या हार बनाते समय बहुत सावधान रहना चाहिए, किसी प्रकार से फूलों में बालों का स्पर्श नहीं होना चाहिए। तो राजा कहते तुरंत पुजारी को बुलाओ। पुजारी को कहते हैं क्या सार्केस्टिकली और उपवास से पुजारी से कहते हैं, क्या आजकल जगन्नाथ के बाल है क्या? हार में बाल आ गया मतलब क्या जगन्नाथ जी को बाल आ गया क्या? तो पुजारी कहते हैं हाँ जगन्नाथ के बाल है। तो राजा शॉक हो जाता है, एक तो वो गलती किया है, ऊपर से झूठ भी बोल रहा है कि जगन्नाथ के बाल है। तो राजा बहुत गुस्सा हो जाता है। तो फिर बलराम जी के पुजारी को बुलाता है, कहते क्या जगन्नाथ बलराम जी के बाल है? कहते नहीं। रोबत जगन्नाथ के पुजारी को पूछते क्या जगन्नाथ के बाल है? हाँ। तो राजा इतना गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, बोलते इसको जेल में डालो। तो ये जो दधीचा महापात्र जो पुजारी वो कहते हैं कि राजन कोई बात नहीं, मुझे जेल में आप डालो, लेकिन आप मुझे पूछ रहे हो, बलराम जी के पुजारी को पूछ रहे हो, सेवक को पूछ रहे हो, सबको पूछ रहे हो कि जगन्नाथ जी के बाल है क्या नहीं? क्यों जगन्नाथ जी क्यों नहीं पूछे जाकर कि उनको बाल है क्या नहीं? चलो ठीक है चलो। तो दधीचा महापात्र और राजा दोनों जगन्नाथ जी के अल्टर में जाते हैं। रात का समय है, अल्टर बंद ही होना, लेकिन राजा आया है, अल्टर खुला रखा है। जैसे राजा पहुँचते जगन्नाथ जी के सामने आकर पूछते हैं भगवान जगन्नाथ क्या आपके बाल हैं? तंदर से आवाज आता है कान पर बहुत बाल है, जोर से बोल। तो राजा जोर से बोलता है हे भगवान जगन्नाथ क्या आपके बाल हैं? तो भगवान ऐसे अपने आसन से उठ जाते हैं और नीचे उतरते हैं और फिर वापस क्या कहा? राजा जोर से बोलता है भगवान जगन्नाथ क्या आपके बाल हैं? तो भगवान जगन्नाथ अपना मुंडी ऐसा उड़ाते हैं, जो लंबे बाल रहते हैं लड़के लोग ऐसा उड़ाते, तो पूरा ऐसा उड़ जाता। तो जैसे भगवान जगन्नाथ ऐसा मुंडी उड़ाते हैं तो पूरा ऐसा करने से पूरा बाल संवार जो है ऐसा यहाँ आ जाता है। तो भगवान जगन्नाथ क्या कहा? खान आगे करते राजा को बोलते क्या कहा? तो राजा शौक हो जाता है भगवान जगन्नाथ के बाल। तो फिर भी राजा को विश्वास नहीं हो रहा है, इतने साल का भी सुना नहीं था। तो उसको लगता है कि शायद ये पुजारी नकली बिग तो नहीं लगाया। तो राजा जाकर वो बाल खींचता है, एक बाल खींचता है तो रक्त की बूंद गिरती है, खून की बूंद गिरती है, तो राज समझ आता है, अरे सचमुच के बाल है। और अभी भी वो बाल उनमें का जो म्यूजियम है उसमें रखा हुआ है। तो ये भगवान जगन्नाथ अपने, फिर राजा पुजारी से पूछते हैं ये कैसे हुआ, ये कभी तो सुना नहीं था, ऐसा कभी हुआ नहीं करा भगवान जगन्नाथ के बाल थे, अचानक कैसे? तो ये पुजारी कहते हैं कि जब मैं भगवान का श्रृंगार कर रहा था, श्रृंगार करते करते मैं सोच रहा था कि भगवान श्याम सुंदर है, भगवान का नाम केशव है, जिनके घुंघराले बाल हैं, धंधे पे ऐसे गिरते, कितना सुंदर लगता है भगवान का मुख कमल, सुंदर घुंघराले बालों के साथ भगवान कृष्ण भगवान जगन्नाथ कैसे सुंदर लगते होंगे। ऐसे मैं सोच ही रहा था जब मैं टर्बन डालने गया, देखा तो भगवान के बाल है। तो भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए, प्रतिसाद देने के लिए, उनके साथ भगवान प्रेम का संवाद करने के लिए कैसे कैसे रूप धारण करते हैं। जैसे आप पूछ रहे भगवान जगन्नाथ राजापुर के अलग है, वहां के अलग है, अपने भक्तों के लिए भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो जाता है। आपको किसी को स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए कि चलो भाई अपना खुद का एक भगवान बनाता हूँ लेकिन जब भगवान प्रकट होते हैं ऐसे स्थान पे जहाँ पे कोई शुद्ध भक्त है, भगवान का वो रूप है। तो किसी रूप में भी जैसे प्रहलाद महाराज को शंड अमर पूछते हैं कि अरे प्रहलाद ये राक्षस कुल है या हिरण्यकश्यप के महल में सपने में भी कोई ब्राह्मण या वैष्णव नहीं आ सकता, ये सब सीखा कहाँ से, तुमको भगवान प्रति आकर्षण कैसे पैदा हो गया? प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जैसे एक चुंबक लोह के प्रति स्वाभाविकता आकर्षित होता है, जो लोहा होता है चुंबक के प्रति स्वाभाविक रीत से आकर्षित होता है, वैसे मेरा ये स्वाभाविक भगवान प्रति आकर्षण है। तो वैसे अपना जीव का कभी कभी एक स्वाभाविक आकर्षण होता है जो भगवान के स्वरूप के प्रति, इसलिए कभी लोगों को जब नरसिंह देव का रूप देखते हैं बाहर के लोग डर जाते हैं, क्या है, लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है, क्या है, कैसा रूप है, लेकिन कोई भक्त है जो नरसिंह देव के प्रति आकर्षित होते हैं, दिन रात उनका ही ध्यान करते रहते हैं, बाहर अगर जगन्नाथ की विग्रह देखेंगे कोई तो सोचते हैं कैसे डॉल्स है, हाथ ऐसे है, कैसे खिलौना है, क्या है, तो समझ में नहीं आता लोगों को, लेकिन कितने भक्त हैं सब कुछ उनके ऊपर न्योछा कर देते जगन्नाथ के लिए। तो ये अपने भक्तों का एक भाव होता है, एक स्वाभाविक आकर्षण होता है, और भगवान भी उनके साथ वैसा आदान प्रदान करते हैं। जगन्नाथ कौन है? कौन है जगन्नाथ? कृष्ण। गोपीनाथ कौन है? आपके घर में कृष्ण है, जगन्नाथ है, वही कृष्ण है ना, तो क्यों कहते कि कृष्ण नहीं है, गोपीनाथ है, बलराम जी है, सुभद्रा है, कृष्ण है मतलब वहां बलराम जी सुभद्रा सब कुछ, उनका पूरा परिवार है, जहां पर राधा गोपीनाथ है वहां से अगर आपको प्रेरणा मिलती है, आप जगन्नाथ जी भी रखते हैं, स्वयं कृष्ण जी गोपीनाथ जी जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट होते हैं। राधा गोपीनाथ जी जो है, महाराज जी कहते कि जो लक्ष्मी नारायण है नीचे, वही राधा गोपीनाथ नीचे प्रकट हुए हैं, उनका स्वरूप है। वैसे घर में अगर कोई जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रखते हैं तो कृष्ण राधा गोपीनाथ जो राधा कृष्ण है वही भगवान जगन्नाथ बलदेव जी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। उसी भाव में हमको उनकी सेवा करनी चाहिए।
जब भगवान निष्पय रहते हैं आप
जब अल्टर बंद होता है तो भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं। कारण ये है क्योंकि जब कोई वैष्णव टिकट में भी नियम होता है, जब कोई कपड़ा वस्त्र पहनते हैं तो आपको कोई धोती पहन रहा है पहनते हैं, आप जाके उनको प्रणाम करो, क्या करते हैं वो भी धोती पकड़ के आपको प्रणाम करता है, आपने उसको मुश्किल में डाल दिया। कोई भोजन कर रहा हो, भोजन करते करते आप जब उनको प्रणाम करते प्लेट के ऊपर वो सर टेक देता है नहीं, कई बार ऐसा होता है। तो मतलब इसलिए वैष्णव टेक्निक में क्या बताया कि जब कोई भोजन करता हो या कोई वस्त्र पहनता हो, स्नान करता हो या कोई रास्ते में खड़ा हो तो आपको प्रणाम नहीं करना चाहिए, वैष्णव टिकट है। तो वैसे ही पर्दा कभी बंद होता है, तीन समय पर्दा बंद होता है, एक तो जब भगवान सो रहे हो पर्दा बंद होता है, भगवान जब स्नान करते हैं श्रृंगार करते हैं तब पर्दा बंद होता है, जब भगवान भोजन करते हैं तब पर्दा बंद होता है, तीन समय पर्दा बंद होता है। और तीन समय वैष्णव टिकट में बताया गया है कि आपको प्रणाम नहीं करना चाहिए, इसलिए प्रणाम नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम प्रणाम करते हैं तो भगवान प्लेट से उठकर आपका प्रणाम स्वीकार करते हैं। जब भगवान स्नान कर रहे हो आप जब प्रणाम करते हैं तो भगवान स्नान से उठकर आपका प्रणाम को स्वीकार करना पड़ता है, इसलिए पर्दा जब बंद होता है तो प्रणाम नहीं करते हैं। लेकिन पर्दा खुला रहने होने तक खड़ा रहना चाहिए वहाँ पर, वो भी नियम है। बोले चलो अच्छा हो गया पर्दा बंद है आप जो यहाँ से पर्दा बंद है तो पर्दा खुलने तक खड़ा रहना चाहिए, वो भी नियम है उसके पीछे रहा देखो। जब ये समझो भोग लग रहा है तो पर्दा खुलने तक प्रभुपाद को प्रणाम करो, वैष्णव प्रणाम करो, प्रभुपाद को प्रणाम करो, और जब पर्दा खुले तब तक रहा देखो, जब पर्दा खुल जाए तो भगवान को प्रणाम करो, तो ये टिकट है। अगर आपको पूर्ण दूर कहीं गांव जाना है तो ऐसे अवस्था में अगर आप भगवान को वापस नहीं मिलने वाले हैं तो प्रणाम करके जाना चाहिए, ऐसी अवस्था। लेकिन ठीक है, और कोई प्रश्न है? मेरे ख्याल से बहुत प्रश्न है, लेकिन बाहर आपका बहुत बड़े मेहमान इंतजार कर रहे हैं प्रसाद के रूप में, बड़े मेहमान मतलब भगवान है आपका इंतजार कर रहे हैं प्रसाद के रूप में। तो जब प्रसाद लेकर फिर वापस आएंगे फिर हम लोग, मैं सेशन कम करूँगा और क्वेश्चन आंसर ज़्यादा रखूँगा, जितना भी आपको कितना क्वेश्चन आंसर है आप सब पूछ लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। अरे प्रसाद खाने के बाद फिर वापस सेशन करना तो मुश्किल है, फिर हम फिर भी हम जगह रहने की कोशिश करेंगे। तो वैष्णव आचमन प्रैक्टिकल सेशन है कि अपने कोई भी आर्च विग्रह की सेवा करने से पहले आचमन करते हैं, ये शुद्धिकरण की विधि है। जैसे अभिगमन उपादान योगा, योगा में कि अपने भौतिक स्तर से अपने आप को आध्यात्मिक स्तर पे स्थापित करना उसे कहते हैं योगा, तो उसमें आचमन आता है। तो आचमन करने से पहले अपने हाथ स्वच्छ होने चाहिए और कोई भी मटके से या नल से पानी जो फ्रेश है जिसको कभी किसी ने यूज़ नहीं किया है घर में, ऐसे मटके में पानी पानी लेकर आचमन पात्र में पहले उसे शुद्ध करना है पानी को, तो उसे कहते हैं प्रोक्षण। और फिर अंकुश मुद्रा से उसे हमें पवित्र बनाना है। अभी इसमें आपने पानी लिया है तो इसको अपने पहले दोनों हाथ को स्वच्छ कर लेना या धो लेना, और फिर एक दो बूंदे इसमें लेकर उंगली से पानी इसमें छिड़कना है, स्प्रिंकल करना है। और जब स्प्रिंकल करते हैं, एक ही बार स्प्रिंकल करना है, स्प्रिंकल करते ही मुख से ओम अस्त्राय फट मंत्र बोलना है। ओम अस्त्राय फट, सब लोग बोलेंगे ओम अस्त्राय फट। तो ऐसे पानी लेकर ओम अस्त्राय फट बोलकर फिर इसे कहते अंकुश मुद्रा। ये जो दो उंगली है इसे अंगूठे से दबाना है, और फिर ये जो उंगली है इसको 90 एंगल में काट कोण में बेंड करना है, और ये जो उंगली बीच का उंगली उसका खाली जो चमड़ी है उसको पानी में स्पर्श करना, नाखून स्पर्श नहीं होना चाहिए। नाखून स्पर्श हो जाता है तो पानी अपवित्र हो जाए, जल अपवित्र हो जाता है। खाली ये भाग जो है पानी को स्पर्श होगा, और मंत्र कहेंगे गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। सब लोग चाहिए तो लिख लेंगे गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। तो ये मंत्र बोलने से हम ये अंकुश मुद्रा जो है शुद्धिकरण के लिए उपयोग करते। पहले बोला वैदिक पद्धति और तांत्रिक पद्धति, तो मुद्रा है। एक तो प्रोक्षण होता है जिसको ओम अस्त्राय फट बोलकर शुद्ध करते हैं, फिर ये अंकुश मुद्रा कहते हैं। अंकुश मतलब जो हाथी को नियंत्रण करने के लिए उपयोग करते, वो अंकुश, ऐसा ही अंकुश होता है। तो अंकुश मुद्रा से ये पार्ट पानी को स्पर्श होगा, और फिर हम सात नदियां जो पवित्र नदी है उनको इस जल में आवाहन करते हैं। आवाहन मतलब उनको यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। सात नदियां जो हैं मंत्र बोलने से मुद्रा करने से इसमें स्थापित हो जाती हैं, इसलिए इसे कहते भी पवित्र जल हो गया या सामान्य अर्घ्य बन गया। सामान्य अर्घ्य या पवित्र जल या गंगा जल कहते हैं बनाने के बाद। तो शुरुआत से देखेंगे फिर वापस, ओम अस्त्राय फट गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। गंगे च यमुने चैव, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। जलेस्मिन मतलब ऐसा सारे जल है, सन्निधिम कुरु मतलब इसमें आप आ जाइए, सन्निधिम कुरु। सात नदियां हो गए, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। किसी को अभी तक सात नदी नहीं मिली है? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। जलेस्मिन सन्निधिं कुरु, कुरु मतलब आइए, सन्निधिं सन्निधिं कुरु। तो ये पूरा जो विधि है इसे कहते प्रोक्षण, पानी शुद्ध कर दिया, ये भी पवित्र जल बन गया। इससे फिर हमें आचमन करना है या भगवान को स्नान करने के लिए उपयोग करना है, कभी भगवान की सेवा में पानी यूज करना है, उपयोग करना है, इस तरह से उसको पवित्र बना लेना है। सादा नल का पानी है लेकर उसको पहले प्रोक्षण बनाकर पवित्र जल बना दो, सामान्य अर्घ्य बना दो, उसके बाद फिर उसको आचमन के लिए यूज करना है या उसका स्नान जल बनाना है या किसी भी इसके लिए यूज करना है। खाली पीने के लिए सादा डायरेक्ट पानी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो भी विधि है स्नान करने के लिए जो भी करने के लिए ऐसा पवित्र जल बनाकर ही कर सकते हैं। रोज सुबह एक बार कम से कम इसको फ्रेश वाटर लेकर उसको शुद्ध कर लेना है, उसके बाद फिर आचमन करते हैं इसको। हर बार आचमन करते समय इसको शुद्ध करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ खास विधि नहीं, फिर भी ये बचपन से पहले एक राइट हैंड पे छोड़ा, फिर बाद में राइट हैंड से लेफ्ट हैंड, उसके लिए खास विधि नहीं, लेकिन ये प्रोक्षण है, ये करके फिर आचमन करना है। तो आचमन करने के लिए हमें बाएं हाथ से दाएं हाथ पे 3 बूंद पानी लेना है, और पानी लेकर पानी में देखना है, और जल जहाँ हम लोग लेते हैं जल को हाथ में देखना है, और फिर जो इसे कहते हैं ब्रह्म तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ से पानी को सीप करना है, पानी को पीना है। तो ये हाथ में पानी लेकर उसको देखना है, क्योंकि देखे बिना कुछ भी चीज़ अगर अंदर चले जाती है अपने शरीर में, उसका फल हमें नहीं मिलता। भू भुव स्व, जो भूलोक के जो जीव हैं उनको शरीर नहीं होता, तो जो भी चीज़ हम देखे बिना अंदर लेते हैं उसका फल उनको मिलता है। इसलिए पुराने लोग बोलते थे ना कि अंधेरे में मत खाओ, अंधेरे में वो मत करो, वो मत करो, क्योंकि क्यों देखे बिना कुछ अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसका जो तत्व है वो उन लोगों को जाता है, भूलोक के जीवों को। कोई बोलेगा अमित वैष्णव में करुणा होनी चाहिए तो दे देना चाहिए, पहले हमारा उद्धार करे फिर आगे भी होगा। तो तीन बूंद लेकर जल को देखना है, और फिर ब्रह्म तीर्थ से सीख करना, ओम केशवाय नमः, और फिर वापस एक बूंद हाथ पे छोड़ना है। तीन बूंद लेकर बाएं हाथ से दाएं हाथ पे 3 बूंद लेना है, और पानी को देखना है, जल को देखो, और फिर ये जो ब्रह्म तीर्थ है इसे कहते हैं ब्रह्म, ये जो पार्ट है इसको कहते हैं ब्रह्म तीर्थ, ये ब्रह्म तीर्थ से उसको सीप करना है। तो ओम केशवाय नमः, फिर वापस एक बार एक बूंद छोड़ देना है, और फिर वापस ओम केशवाय ओम नारायण नमः 3 बूंद लेकर पानी को देखना, फिर वापस ओम नारायण नमः बोलकर पानी पीना है, फिर वापस एक बूंद छोड़ देना है, फिर वापस 3 बूंद लेकर पानी को देखना, ओम माधवाय नमः बोलकर फिर वापस पानी छोड़ देना। इसे कहते हैं वैष्णव आचमन। तो इसमें कुछ डिफिकल्टी है समझने में, समझ गए सब लोग? वापस एक बार, तो अगर आप गंगा जल है आपके पास तो इसको प्रोक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे गंगा जल अगर ऑलरेडी है और आप कहीं वृंदावन में है, मायापुर में है, जहाँ ऑलरेडी गंगा यमुना है, तो ऑलरेडी वो पवित्र जल है, तो उसको वापस आपको प्योरीफाई करने की आवश्यकता नहीं है। घर में जल ला कर रखा है और रोज उसमें 2-4 बूंद डालते जा रहे हैं तो इजी वे। लेकिन अगर प्रैक्टिकली एक्चुअली पानी को शुद्ध करके ये आचमन करते हैं, हाँ पानी शुद्ध हो जाता। कलयुग के जीव है तो इजीली यूजुअली हम लोग क्या इजी वे आउट देखते हैं, कि इतना सब मंत्र बोलना फिर प्यूरिफाई करना, तो 2 बूंद डाल दो काम हो गए। लेकिन इन्हें इसलिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में है कि आसान कर दिया बहुत कुछ। फिर भी ये स्टैंडर्ड सबको पता होना चाहिए। तो वापस एक बार दिखाते हैं, ये 3 बूंद दाएं हाथ में लिए हैं, एक जल को देखना है, फिर ये जो ब्रह्म तीर्थ है इसे सीप करना है, ओम केशवाय नमः, और फिर एक बार छोड़ एक बूंद छोड़ देना है उस पर दाएं हाथ पे, फिर वापस ओम नारायण नमः, फिर वापस छोड़ना है, फिर वापस पानी को देखकर ब्रह्म तीर्थ से सीप करना है, ओम माधवाय नमः, और फिर वापस हाथ को स्वच्छ करना है। अगर ये सीमना निर्जल के दिन हो तो आधा ग्लास पानी पी जाएंगे। तो बार बार कराते दिखाते दिखाते फिर क्योंकि निर्जल के दिन काफी लोग बहुत अच्छी तरह से आचमन करते हैं नहीं नहीं तो आचमन है। और कुछ इसमें प्रश्न है, कोई शंका है आचमन के बारे में? निर्जल के दिन आचमन करना है कि नहीं करना है? निर्जल के दिन अगर इतना ही कोई स्टॉन्च स्ट्रिक्ट निर्जल करता है, जो अपना जो थूक वो भी नहीं गिनते हैं, तो उसको खाली ओठों को स्पर्श करके पानी छोड़ देना चाहिए। अगर इतना कोई स्टॉन्च फॉलोअर है कि वो एक्चुअली वैसा देखा जाता है, निर्जल के दिन थूक भी नहीं गिनना चाहिए अंदर, वो भी नहीं अंदर जाना चाहिए। तो फिर आचमन भी खाली ओठों को स्पर्श कर दो भी तो भी चलेगा। तो अभी आचमन कर दिए, पहला विधि होता है अर्च वगैरह के सेवा में भगवान को जगाना। तो भगवान को उठाने से पहले, वेकिंग अप के पहले अपना वेकिंग अप हो जाए, हम लोग ब्रह्मत मुहूर्त में उठना चाहिए। और फिर स्नान संध्या सब होने के बाद अल्टर में प्रवेश करने से पहले अपने अल्टर के बाहर कहीं अपने स्पिरिचुअल मास्टर गुरु महाराज की तस्वीर हो, प्रभुपाद की तस्वीर हो, जहाँ उनको पहले प्रणाम करें। क्योंकि जो अर्च विग्रह की सेवा है, हम डायरेक्टली डीटीज को अप्रोच नहीं करते, अपना वो क्वालिफिकेशन नहीं है, तो हम गुरु महाराज की परमिशन ब्लेसिंग्स लेकर डीटीज के पास जाते हैं। इसलिए पहले स्नान करने के बाद, आचमन सब करने के बाद पहले गुरु महाराज के पास आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनसे परमिशन और ब्लेसिंग्स लेते हैं कि हम जगन्नाथ की सेवा करने जा रहे हैं या राधा कृष्ण की सेवा करने जा रहे हैं, गुरु नेता की सेवा करने जा रहे हैं, तो कृपया ब्लेसिंग्स और परमिशन दीजिए। हाँ, दंडवत करके हाथ जोड़ के उनसे लिटरली परमिशन मांगना है कि प्लीज़ मैं सेवा करने जा रहा हूँ, तो आप ब्लेसिंग्स और परमिशन दीजिए। तो मतलब वी आर वर्शिपिंग डेट इज बिहाफ ऑफ अवर स्पिरिचुअल मास्टर, स्पिरिचुअल मास्टर गुरु महाराज के प्रतिनिधि के रूप में हम उनकी सेवा कर रहे हैं। और अल्टर में जब प्रवेश करते हैं तो बाएं हाथ से घंटी बजाते बजाते, या घंटी नहीं तो दरवाजे में नॉक करके, अगर नहीं है तो फिर हम लोग तीन बार ताली बजा के अल्टर में प्रवेश करते हैं। तो जब पहली बार अल्टर में प्रवेश करते हैं या मंदिर में प्रवेश करते हैं, दाया पैर पहले अंदर रखना चाहिए। अल्टर में जैसे जाते हैं या अल्टर के एरिया में जाते हैं, दाया पर राइट फुट फर्स्ट रख कर दोनों हाथ ऊपर करके भगवान का स्वागत करना चाहिए। अगर जगन्नाथ डीटीज है, जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री गौर नित्य शिल प्रभुपाद की जय, ऐसा करते उनका स्वागत करते हुए अंदर प्रवेश करना चाहिए। क्योंकि भगवान जब देखते हैं कि अपना भक्त बहुत प्रसन्न है, अपने भक्त की प्रसन्नता देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं, तो भगवान को खुशी देने के लिए भक्त जो है भगवान के सामने हमेशा स्मित हास्य मुद्रा में आगे जाता है। इसलिए पहली बार जब प्रवेश करते हैं, सोचो अगर पूरा एकदम मोरोस चेहरा लेकर और एकदम टेंशन लेकर वो भगवान के सामने चला जाए, तो भगवान को सोचने लगते कि सारा संसार तो मैं संभाल रहा हूँ, इसको क्या टेंशन हो रहा है। सोचे कि भगवान ही सारा सब कुछ कर रहा है, लेकिन ये जीव सोचता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, और इतना टेंशन लेकर एकदम मोरोस चेहरा लेकर। क्योंकि दो प्रकार का प्रोटेक्शन होता है, एक भावना के स्तर पर रक्षण, दूसरा बॉडीलिक प्लेटफॉर्म मतलब शारीरिक स्तर पर रक्षण और भावनाओं के स्तर पर रक्षण। तो भगवान को अल्टर देना, भगवान को श्रृंगार करना, भोग करना देना, ये सब बॉडीलिक प्लेटफॉर्म मतलब भगवान के शरीर के स्तर पे हम उनको सब दे रहे हैं, लेकिन भगवान के भावनाओं का भी रक्षण करना वो भी जरूरी है। तो भगवान के आसपास ऐसा माहौल बनाना, भगवान के सामने ऐसे व्यवहार करना कि जिससे भगवान को खुशी रहे, हमेशा भगवान प्रसन्न रहे, भक्त की भावना होती है। सोचिए आप किसी को भोजन के लिए बुलाओ, ऐसे 5 पकवान का भोजन बनाकर उनको अच्छे थाले में परोसो और वो खा रहा है, आनंद ले रहा है, और बीच आधा भोजन होने के बाद अगर आप उनको बोलो कि काम धंधा तो करता नहीं, फुकट का आके खाता है, कैसा लगेगा वो भोजन? इतने 5 पकवान, इतना अच्छा भोजन आपने तैयार किया है, इतना मेहनत किया है, बॉडीली शारीरिक स्तर पर सब आपने उनको दिया है, फीलिंग्स जो भावनाएं हैं उसको रक्षा न करने की वजह से भोजन अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही भगवान की जो भावनाएं हैं, भगवान जब देखते हैं भक्त प्रसन्न है, भक्त खुशी है, इसलिए डेटीज जहाँ हैं घर में हो सके उतना वातावरण बहुत ही प्रसन्न होना चाहिए। घर का वातावरण देखकर भगवान के चेहरे पे भी वैसी प्रसन्नता आ जाती है। इसलिए वैदिक संस्कृति में बताया जाता है ना कि घर में जब डेथ हो जाता है तो कोई 12 दिन मंदिर नहीं जाते, कोई 15 दिन नहीं जाते, कोई 1 महीना नहीं जाते, कारण वही है। वैदिक इसमें लोगों में इतना लगाव था, इतना एक दूसरे के प्रति प्रेम स्नेह होता था कि लोग कोई घर में अगर डेथ होता है 10-10 दिन 15-15 दिन लोग रोते रहते थे। अभी आजकल कुछ फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, लेकिन जहाँ रिलेशंस है वहाँ पे लोग मतलब रोते रहते थे, वो लोग खाना पीना सब छोड़ देते थे। तो ऐसे इसमें और अगर व्यक्ति रोते रोते भगवान के अल्टर में जाता है, उसका रोना देखकर, उसका शोक देखकर भगवान दुखी हो जाते थे। तो भगवान को दुख नहीं होना चाहिए, मेरे आंसुओं से भगवान को दुख नहीं होना चाहिए, इसलिए भक्त मंदिर में नहीं जाते थे, लोग मंदिर में नहीं जाते। वो कर्मकांड या खास करके वैदिक इसमें वो नियम था कि ऐसी अवस्था में मंदिर में जाना चाहिए। लेकिन आजकल जैसे हम लोग एक गांव में प्रोग्राम कर रहे थे, तो पंडाल प्रोग्राम था, हरिनाम संकीर्तन के लिए गए, सब गली गली में हरिनाम कर रहे, एक आदमी घर के बाहर नहीं आ रहे, तो हम लोग बकेट्स भर के हलवा बांट रहे, प्रसाद बांट रहे, कोई प्रसाद भी नहीं ले रहे। तो मैं कुछ समय के बाद पूछा, क्या हुआ, कोई प्रसाद क्यों नहीं ले रहे? बोलते हैं गांव में डेथ हो गया। बोले प्रोग्राम में भी नहीं, प्रोग्राम में भी नहीं आएंगे लोग, बोले एक आदमी मर गया, कोई प्रोग्राम में नहीं आएंगे, कोई प्रसाद नहीं लेंगे। बोला अच्छा है, बाद में देखा घर सबके घर में टीवी चालू है, सबके घर में सीरियल चालू है, पिक्चर चालू है, मतलब यहाँ पे शौक नहीं लगता, टीवी को शौक नहीं लगता है, मतलब खाली कर्मकांड करना ही इसलिए करना है, प्रसाद नहीं लेना चाहिए, भगवान का दर्शन नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? अगर आप हंस कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, तो भगवान के मंदिर में जाने की क्या प्रॉब्लम है? वो नियम इसलिए बनाया था कि वो शोक की भावना से भगवान के सामने नहीं जाना चाहिए, ताकि भगवान को दुख न हो। सुबह जब उठते हैं, आपको मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप गाँव में कुछ रूल्स फॉलो करते, फॉलो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, जो भी रूल्स रेगुलेशन आप करना चाहिए, लेकिन फिर भी इसके पीछे कारण क्या है, क्यों मंदिर में नहीं जाते हैं? जैसे वैष्णव में 2-3 दिन में तुरंत अल्टर खोल देते हैं, अगर बहुत ही 1-2 दिन बहुत ही रोना धोना है तो उतना मेहमान ज़्यादा आते हैं तो अल्टर बंद रखते हैं, बाकी समय वो लोग अल्टर खोल देते कि नहीं मेरे भगवान को क्यों दुख देना है, क्यों उनको भूखा रखना है? तो क्योंकि उनको शोक है, वो विरह है भक्तों के एक दूसरे के प्रति, लेकिन नॉलेज होने की वजह, इसलिए ब्राह्मण के लिए खाली 12 दिन बताया था, क्षत्रिय के लिए 15 दिन बताया था, शूद्र के लिए 21 दिन 1 महीना बताया था, क्यों? ब्राह्मण को नॉलेज है, जल्दी शोक से बाहर आ जाता है, क्षत्रिय को इसे थोड़ा कम जाना जैसे 15 दिन है, शूद्र के लिए और थोड़ा कम जाना है, तो उसको 1 महीना के लिए बाहर होने के लिए बोला है। वैसे वैष्णव को पूरा ज्ञान है कि जो व्यक्ति गया है ये भगवान का अंश है, ये वापस भगवत धाम गया है, तो वहाँ पे तुरंत वो फिस्ट कर, जैसे चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर का देहांत हुआ तो तुरंत ही चैतन्य महाप्रभु बॉडी को लेकर नाच रहे हैं, कीर्तन करते जा रहे हैं, और जैसे समाधि दिया फिर वापस आकर उन्होंने सब दुकानदारों से प्रसाद मांगकर बड़ी फिस्ट खिलाई। तो वहाँ पर बुरा ज्ञान अगर है तो शोक का प्रभाव कम होता है। भक्त भी एक दूसरे के रोते हैं लेकिन वो विरह जो है भौतिक शोक नहीं है। तो वैसे मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो भगवान जब देखते भक्त प्रसन्न है, भक्त की प्रसन्नता देखकर भगवान भी प्रसन्न हो जाते, इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री गौर नित्य श्री प्रभुपाद की जय, प्रसन्न मुद्रा में हम भगवान का स्वागत करते हैं जब भी मंदिर में पहली बार जब जाते हैं। फिर बाएं हाथ में घंटी बजाते हुए राइट हैंड से दाएं हाथ से हम पहले गुरु महाराज के चरणों को स्पर्श करते हैं, फिर प्रभुपाद के चरणों को स्पर्श करते हैं, फिर गौर नित्य है तो नित्यानंद प्रभु के चरणों को स्पर्श करते हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु के चरणों को स्पर्श करते हैं, फिर जगन्नाथ बलदेव है तो फिर सुभद्रा बलराम जी जगन्नाथ जी इनके चरणों को स्पर्श करते करते मंत्र बोलते हैं, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज के चरणों को स्पर्श करते हैं, कहते हैं उत्तिष्ठोत्तिष्ठ श्री गुरुवे नमः। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ मतलब गुरु महाराज कृपया उठिए जगिए। ये जो मैनुअल है इसमें शायद सबको कॉपी देने वाले हैं तो उसमें दिया है, स्टैंडर्ड दिया गया है, मंत्र भी लिखे हुए हैं। तो हाँ उठाने का सीक्वेंस भाई बता रहा हूँ कि पहले गुरु महाराज के चरणों को प्रवेश किए हैं, बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड में घंटी बज रही है और राइट हैंड से हम गुरु महाराज के चरणों को स्पर्श करते हैं और कहते हैं उत्तिष्ठोत्तिष्ठ श्री गुरुवे नमः। फिर परम गुरु प्रभुपाद के चरणों को स्पर्श करते हैं उत्तिष्ठोत्तिष्ठ श्री परम गुरुवे नमः। फिर नित्यानंद प्रभु के चरणों को स्पर्श करते हैं उत्तिष्ठोत्तिष्ठ श्री नित्यानंदाय नमः। फिर चैतन्य महाप्रभु के चरणों को स्पर्श करते हैं उत्तिष्ठोत्तिष्ठ श्री गौराय नमः। फिर सुभद्रा उत्तिष्ठोत्तिष्ठ सुभद्राय नमः। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ श्री बलरामाय नमः। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ श्री कृष्णाय नमः। जगन्नाथ के लिए श्री कृष्णाय नमः। नहीं, एक बार अपने डेटी वर्षिप में अगर गुरु महाराज को एक बार सेवा अर्पण किए हैं तो पसाई परंपरा को पहुंच जाते हैं। नहीं, उसके लिए भी ऐसा स्पेसिफिक अगर नरसिंह देव का अल्टर है तो फिर आप उसके लिए स्पेसिफिक। हाँ, स्पेसिफिक ऐसा उठाने की जरूरत है, मतलब मैनुअल में तो नहीं है उसके बारे में। एक्चुअली गुरु महाराज को जो भी सेवा अर्पण करते हैं उससे सारी परंपरा को पहुंच जाता है, लेकिन इस्कॉन में होने की वजह से हम श्रील प्रभुपाद हमारे फाउंडर आचार्य हैं तो इस्कॉन में हमेशा प्रभुपाद की वर्शिप रहेगी। बाकी 10 जनरेशन के बाद भले उनके स्पिरिचुअल मास्टर अलग होंगे तो उनका स्पिरिचुअल मास्टर का पूजा करके उनको परम गुरु के रूप में प्रभुपाद की पूजा करनी, ये सिद्धांत। तो ऐसे उठाते उठाते गुरु परम गुरु नित्यानंद चैतन्य सुभद्रा बलराम जी जगन्नाथ जी फिर राधा कृष्ण अगर है तो ऐसे मंत्र बोलते उठाना, क्यों हम लोग स्पिरिचुअल मास्टर को जगाते से हम पहले स्पिरिचुअल मास्टर को जगाते हैं और जब सुलाते हैं तो पहले डेडीज को सुलाते हैं, बड़े जगन्नाथ जी बलराम जी, फिर लास्ट में गुरु महाराज को सुलाते हैं। क्योंकि जब उठाते हैं तो पहले स्पिरिचुअल मास्टर को उठाते हैं ताकि स्पिरिचुअल मास्टर हम जो भी सेवा कर रहे हैं वो देख रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। जब सुलाएंगे तो पहले विग्रह को सुलाएंगे फिर लास्ट में स्पिरिचुअल मास्टर को सुलाते हैं ताकि सुलाते समय भी जो भी हम कर रहे हैं उनके मार्गदर्शन में उनके साथ कर रहे हैं, ये उसके पीछे भाव। तो इस तरह से उनको विग्रह को मंत्र से जगा सकते हैं। तो डेडीज को फोटोज को आपने प्रैक्टिकल सुलाए हैं तो वापस उनको बिस्तर से उठाकर उनको अपनी जगह पे रखना है और जो गद्दी है अगर कुछ रखा है वो क्लीन करना है, फ्लावर्स कुछ है तो उसको भी निकालना है और पूरा अल्टर को गीले कपड़े से स्वच्छ करना है। हाथ धोकर उनको आचमन कर सकते हैं, क्लो पाउडर का जो आचमन है वो आप अर्पण कर सकते, इदम आचमनियम गुरुवे नमः, इदम आचमन परम गुरुवे नमः, इस तरह से आचमन कर सकते हैं। और उसके बाद फिर अगर मंगल आरती करना है, उसके पहले विग्रह को जो भी साज सामग्री है, आपने समझो रात को कुछ क्राउन निकाल के रखा है, उनके ज्वेलरी कुछ निकाल के रखे, तो उनको ज्वेलरी वापस अर्पण कर सकते। ये सब पर्दा खुलने से पहले ही भगवान को सब अर्पण करके रखना है। और फिर बाद में आप मंगल आरती के लिए पर्दा खोल सकते हैं, या फिर अगर किसी को मंगल आरती बाद में करनी है, पहले जपा करना है, तो अल्टर खोल के जपा कर सकते हैं, या किसी को तुरंत तुरंत भोग लगाना है तो भोग लगा कर फिर बाद में आरती कर सकते, जैसे भी घर का शेड्यूल है वैसे आप कर सकते हैं। रिपीट, क्या क्या नहीं, क्लीन अल्टर क्लीन करने के लिए गीले कपड़े से करना चाहिए, उसके बाद हाथ धोकर, क्योंकि अगर किसी कपड़े को हम लोग स्पर्श करते हैं, फिर अल्टर का हो या जमीन का हो कुछ भी हो, तुरंत हाथ धो लेना चाहिए। लवंग पानी जो क्लो पाउडर का जो पानी दिखाना है वो आचमन से, आचमन के जो चम्मच है उससे दिखाना है। इदम आचमनियम श्री गुरुवे नमः, इदम आचमन श्री परम गुरुवे नमः। यस माता जी, समझ गए, ठीक है। तो इस तरह से भगवान को जगाना का सबको सब लोग समझ गए, जगाने का विधि कुछ मुश्किल है, आप करने लगेंगे तो बहुत आसान है। अभी थेरोडे के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि बहुत लंबा है, इतना बताया, लेकिन जब करने जाएंगे तो 2 मिनट का काम होता है। वैसे जो इंस्टॉल लेडीज होते हैं उनके लिए बहुत आधा घंटे का एक विधि होता है, एक एक मंत्र जो है लेडीज को उठाने के लिए बड़े बड़े श्लोक होते हैं बोलने पड़ते हैं, तो घर के लिए खाली उत्तिष्ट उत्तिष्ट बोल दिया तो भगवान जग जाते हैं। भोग अर्पण करने की विधि, भोग अर्पण करने के लिए भी पहले आचमन करना, जब भी आप दोपहर को ऑफरिंग कर रहे हैं या शाम को कर रहे हैं, कभी भी ऑफरिंग करने से पहले आचमन करना जरूरी है। पहले तो हाथ पैर स्वच्छ धो लेने चाहिए, कभी भी लेडीज के लिए हम कुछ भी करने जाते हैं तो हाथ और पैर धो लेने चाहिए, फिर आचमन करना जरूरी है। और फिर अल्टर का प्लेटफॉर्म गीले कपड़े से स्वच्छ करके, जब भी प्लेटफॉर्म क्लीन करते हैं या फ्लोरिंग क्लीन करते हैं तो हाथ स्वच्छ धोने हैं। जो फिर भोगा का प्लेट है वो बनाकर रेडी रखना है, और जब प्लेट अंदर ले जाते हैं तो तुलसी अलग से कटोरे में ले जा सकते हैं, अंदर बाहर किचन में तुलसी न डाले तो अच्छा है। तो आप तुलसी का अलग से कटोरे में ले जाओ, प्लेट सामने रख दो, और पहले जो प्लेट बनाया उसको शुद्ध करना है, वो किसे प्रोक्षण करने, जैसे पहले बताया था जल को शुद्ध करने के लिए, वैसे ओम मस्त्राय फट, आचमन से पानी लेना है, प्लेट के ऊपर छिड़कना है और ओम मस्त्राय फट बोलना है, और फिर उसके बाद तुलसी डालना है। तो ओम मस्त्राय फट, एक तो जो जल हम लोग छिड़क रहे हो गंगा जल है या पवित्र जल है, उससे जो भी पदार्थ बने हैं वो बाजार से लाने से किचन में बनाने के बाद फिर यहाँ आने तक जो भी इसमें कुछ अशुभ हुआ है तो सारा नष्ट करने के लिए ये जल और मंत्र काम करता है। और फिर ओम मसराय फट बोलने के बाद फिर तुलसी वो हर एक पदार्थ के ऊपर डालनी रखनी है। तुलसी पहले रखने से कुछ अपराध होता है, क्योंकि तुलसी पहले से पवित्र है, और तुलसी पहले से हम लोग डाल के रखे हैं और फिर बाद में अगर उसको ओम मसराय फट करेंगे तो तुलसी को भी शुद्ध कर देते हैं। तुलसी को एक एक कोई महान व्यक्ति है और उसको बोलो कि जपा करते हो गया तो थोड़ा अजीब सा लगता है कि महामंत्र आता है क्या। तो वैसे तुलसी महारानी सबको पवित्र करती है और उसको हम लोग बोलते हैं ओम मसराय फट, तुमको भी पवित्र करता हूँ। इसलिए पहले प्लेट रखना है, वो मसरा फुटबॉल के सारे पदार्थों को शुद्ध करना है, फिर उसके बाद वहाँ पर तुलसी रखनी है। अगर तुलसी समझा अगर सूखे पत्ते हैं, गीले पत्ते नहीं तो हरे नहीं तो सूखे पत्ते भी चल सकते हैं, वो भी नहीं तो मंजरी भी चल सकते हैं, और वो भी नहीं है तो तुलसी की लकड़ी भी चल सकते हैं। भगवान को तुलसी इतनी प्रिय है कि तुलसी के बिना भगवान भोग नहीं स्वीकारते। जैसे कोई क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, जब तक वो सिखाने लगता वो एक्सेप्ट नहीं होता, वैसे जब तक तुलसी नहीं है प्लेट में भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। तो तुलसी मस्ट, हमेशा भोग के ऊपर तुलसी होनी चाहिए। और फिर ऐसा छिड़कना है, प्लेट के ऊपर नॉर्मल छिड़कना, ओम असरा एफर्ट बोल के स्प्रिंकल करना है। जब बारिश के बूंदे गिरते हैं उस तरह से पानी गिरना चाहिए, स्प्रिंकल करना चाहिए। तुलसी डाल दी और फिर हम लोग नीचे बैठकर प्रणाम मंत्र बोलना है। गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र 3 बार, परम गुरु का 3 बार, नमो महावदन न्याय 3 बार, नमो ब्राह्मण देवाय 3 बार। इस तरह से मंत्र नीचे बैठकर घंटी बजाते हुए मंत्र बोलने हैं और फिर भगवान से भोग स्वीकारने के लिए प्रार्थना करके हम लोग बाहर जाकर एक 5 मिनट से लेकर कितना आपका भोग का समय है उतना आप रख सकते हैं। मंदिर में अलग अलग समय होता है, जैसे भगवान को सुबह 5-4:30 बजे भोग लगता है बाल भोग, वो 10 मिनट का रहता है, 5 मिनट का रहता है। सुबह श्रृंगार के पहले पूजा भोग रहता है वो 10 मिनट का रहता है। फिर 9 बजे भगवान को मंगल भोग लगता है वो 10 मिनट का रहता है। राजभोग रहता है दोपहर का 12 बजे, वो 20 मिनट का रहता है। शाम वैकाली का भोग रहता है 4 बजे, वो भी 10 मिनट का रहता है। शाम को जो संध्या भोग होता है वो 15 मिनट का होता है। रात को फिर 8 बजे वापस भगवान को जो कंडेंस दूध ऑफर करते हैं वो 5 मिनट के लिए करते हैं। तैसे भोग का साइज के अनुसार भोग का टाइम भी अलग अलग होता है। तो वैसे घर में भी आपका अगर बहुत बड़ा फीस्ट है तो आप एक्स्ट्रा 5-10 मिनट दे सकते हैं भगवान को कि खा लो। अगर चलो खाली शरबत ऑफर करना है तो 5 मिनट भी भगवान पी लेंगे। तो लेकिन फिक्स टाइम होना चाहिए कुछ। नहीं, नीचे एक बार प्लेट में तुलसी डाल दी, तुलसी रख दिया प्लेट में, फिर नीचे बैठकर मंत्र बोलना है। प्रार्थना कर सकते हैं हम कि आप कृपया आप गुरु महाराज को प्रार्थना करो कि ऑफरिंग किया कृपया आप स्वीकार, तो गुरु महाराज फिर भगवान को ऑफर कर देंगे। यस, क्या करें, बीच में क्वेश्चन आंसर लेना है क्या चाहिए बीच में? तो मुझे पता नहीं सेशन कितने समय तक चलेगा। अगर घर से तुलसी है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इतने मतलब उतनी तुलसी भी हमें लगानी चाहिए कि घर का तुलसी अर्पण करके फिर पूरा तुलसी पत्ता उसका खाली ना हो जाए। तो इसलिए कुछ हमारे पास जब 5-6 कुंडी तो होनी चाहिए ताकि रोज भी अगर उसका ऑफरिंग के लिए हम लोग तुलसी निकालें तो प्रॉब्लम नहीं हो। अगर ज़्यादा तुलसी है तो प्रॉब्लम, घर से भी जो हम लोग तुलसी लेते हैं वही भी ऑफर करेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अवेलेबल घर में तो फिर बाहर से ला सकते हैं, क्योंकि तुलसी होना जरूरी है। तुलसी का पत्ता तोड़ने से पहले तुलसी को प्रणाम करना चाहिए। कभी भी जब तुलसी का हम लोग पत्ता तोड़ने जाते हैं तो पहले प्रणाम करके उनको प्रार्थना करें कि भगवान की सेवा के लिए मैं आपको ले जा रहा हूँ, और तोड़ते समय भी जो मेन ब्रांच होता है उसको पकड़ के फिर पत्ते को धीरे से निकालना है, ऐसा नहीं कि ब्रांच को ऐसे तोड़ते गए, हाँ वैसा नहीं करना, जो मेन ब्रांच है उसका उसको पकड़ के फिर खींचना चाहिए, निकालना चाहिए पत्ता प्रेम से। कि तुलसी भगवान की महान भक्त हैं, वैष्णवी हैं, परम वैष्णवी हैं, तो उसके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं उसके ऊपर अपना स्पिरिचुअल लाइफ बहुत कुछ डिपेंड है। तो बहुत संभाल कर तुलसी के साथ, कोई भी वैष्णव के साथ बहुत ही संभाल के व्यवहार करना चाहिए। हरे कृष्ण। द्वादशी के दिन, द्वादशी तुलसी का जन्मदिन होता है, तो इसलिए द्वादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ते हैं। रविवार का हमारा छुट्टी का दिन होता है, द्वादशी यूजुअली नहीं तोड़ते हैं। तो ये ऑफरिंग अंदर रखने के बाद 5 मिनट जितना भी आपका समय है वो देने के बाद, फिर जब हम ऑफरिंग अंदर रखे हैं तो अपने को कृष्ण कॉन्शियस रखने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों ने ऑफरिंग रखा अंदर और फिर बाहर चले गए, फिर फोन आ गया, फिर नीचे उतरे बिल्डिंग के, फिर वहाँ से कोई फ्रेंड आ गया, फिर बोला मार्केट चले गए, फिर ऑफरिंग 12 बजे रखा तो 4 बजे तक अंदर रह गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब कोई सोचे कि कोई किसी मेहमान को आपने भोजन के लिए बिठाया है और उसको अगर आप अनअटेंडेड रखो, मेहमान कोई भोजन कर रहे हैं और उसको उसका खाके और जाने तक देखो ही नहीं उसको, यू विल फील ऑफेंडेड ना, अपराध जैसा लगेगा उसको, क्या लोग है घर के, तुम्हें खाने बैठा और पूछा भी नहीं चपाती चाहिए सब्जी चाहिए क्या चाहिए। तो वैसे हमको अल्टर में बार बार जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम लोग वहाँ पर अवेलेबल रहना चाहिए। कभी भगवान बोल भी दे कि सब्जी चाहिए तो हम लोग वहाँ पे हाजिर होना चाहिए। तो अल्टर के आसपास ही आप जपा करते बैठो या कोई वैष्णव सॉन्ग गाते बैठो या कोई शास्त्र पढ़ते बैठो, बट बी अवेलेबल देयर, वहाँ पे रहना चाहिए ताकि भगवान वहाँ पर भोजन कर रहे हैं। जैसे दोपहर के समय खास करके भज भगत वत्सल श्री गौर हरि, जो भक्ति विनोद ठाकुर का जो भजन है, भगवान कैसे भोजन करते, क्या क्या भोजन करते हैं, वो हम लोग भजन गा सकते हैं, भगवान के अलग अलग वैष्णव गीत गा सकते हैं, ताकि वो कॉन्शियसनेस रहे, वो भावना रहे कि भगवान भोजन कर रहे हैं। तो क्योंकि हम भगवान को याद करें, भगवान के साथ वो संवाद या भगवान के साथ वैसे फीलिंग्स आदान प्रदान करें, तो भगवान भी हमारे भक्ति के साथ वैसे फीलिंग्स जो भावना है उसका आदान प्रदान करेंगे। अगर भगवान के प्रति हम लोग एक निग्लेक्टेड जैसा, एक दुर्लक्षित ऐसा व्यवहार रखेंगे तो अपने भक्ति में भी फिर वैसे हम लोग अपने आप के भक्तिमय जीवन में वैसे निग्लेक्टफुल बन जाते हैं, साधना के बारे में निग्लेक्टफुल बन जाते हैं या वैष्णव से रिलेशन में निग्लेक्टफुल बन जाते हैं, क्योंकि लेडीज के साथ ही हम लोग का वैसा व्यवहार है, वैसे फिर बाकी समाज में भी अपना वैसा व्यवहार बन जाता है। तो सावधानी बरतनी चाहिए इसमें। भोग के समय भगवान को उठाने के बाद जब पूरा विधि हो जाता है, पर अल्टर के बाहर आके प्रणाम करना चाहिए। हाँ, आरती करने के बाद या तुरंत भगवान को उठाते हैं तो उसके बीच में भी आप बाहर आके प्रणाम कर सकते हैं, अल्टर के अंदर में, अल्टर के अंदर। तो ये जो अल्टर के अंदर प्रणाम नहीं करते क्योंकि ज़्यादा अति परिचित अवज्ञा अनादरो भवति, ज़्यादा अगर कोई बहुत वरिष्ठ व्यक्ति है तो हम लोग थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, रिस्पेक्टफुल रहते हैं, अगर अपना दोस्त आ गया तो कंधे पे हाथ मार के, पीठ पे हाथ मार के हंसते खेलते हैं। तो ये अति परिचय अवज्ञा, जब अति परिचय हो जाता तो अज्ञा अवज्ञा हो जाती है, इसलिए अल्टर के अंदर प्रणाम नहीं करते, बाहर आके प्रणाम करते रिस्पेक्टफुल। एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मुझे कुछ सूचना मिली है, अगर आप क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे तो सेमिनार ही रह जाएगा। शालिग्राम, शालिग्राम की पूजा कैसे करनी चाहिए, ये तो बड़ा क्योंकि शालिग्राम अगर मंदिर में पूजा करते थे कम से कम 2.5 घंटे लगते हैं, पूरे शिरोपचार के साथ उसकी पूजा होती है, और अगर घर में करते हैं शालिग्राम की पूजा, अगर सिंपल तरीका है कि उसको खाली गंगा जल से स्नान करना है और बहुत सारा तुलसी अर्पण करना है, शालिग्राम को तुलसी बहुत प्रिय है, तो बहुत गंगा जल अर्पण करना, अभिषेक करना और बहुत सारे तुलसियों में उनको ढक देना, इट्स बेस्ट वर्शिप फॉर शालिग्राम। तो मुझे लगता है हम लोग पूरा सेमिनार कर लेंगे फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, वही कोशिश करूंगा। तो ऑफरिंग तो सब लोग समझ गए किस तरह से, थोड़ा समय हम लोग अंदर रख सकते हैं और उसके बाद बाहर आके अपने आप को हम कॉन्शियस बना रखें कि भगवान को भोग लगाया है, और फिर 5 मिनट के बाद या 10 जो भी आपका समय है 3 बार ताली बजा के हम अंदर जाना चाहिए, और वहाँ से फिर प्लेट निकाल कर जो जगह है जहाँ भोग लगा था वो गीले कपड़े से वापस स्वच्छ करना है, भगवान को भोग लगाने से पहले जगह को स्वच्छ करना है गीले कपड़े से, फिर वापस जब प्लेट भोग निकालते हैं फिर वापस जगह को स्वच्छ करना चाहिए। ये खाली अल्ट्रे में नहीं, जहाँ हम लोग भोजन करते हैं डे टू डे लाइफ में वहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर भी हम घर में भी जब भोजन करते हैं तो जगह को पहले ही क्लीन करना चाहिए, फिर जब भोजन हो जाता है तो उसके बाद गीले कपड़े से क्लीन कर देना चाहिए। अगर हम लोग भोजन कर लेते हैं फिर वहीं पर बैठ कर कथा करते हैं या वहीं पर बैठ कर स्टडी कर रहे हैं तो क्लीननेस नहीं है। तो भोग लगाने का विधि है, अभी भगवान को विश्राम करना, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं क्योंकि चला तो ठीक है, नहीं तो भी पॉइंट ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। भगवान को रेस्टिंग का जो विधि है, शाम को अगर हम लोग स्नान कर सकते हैं विधि करने से पहले तो अच्छा है, नहीं पॉसिबल तो कम से कम घुटनों के नीचे और अपना जो एल्बोज है उसके नीचे हाथ पैर धो लेना चाहिए, और अपने फेस को भी पूरी तरह से धो के फ्रेश तिलक लगाकर भगवान को सुलाने के लिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ऑफिस से आ गए या बाहर से कहीं से आकर फिर खाली आचमन करके अल्टर में चले गए, कम से इतना तो क्लीननेस मेंटेन करना चाहिए कि घुटनों से नीचे और एल्बो से नीचे अच्छा हाथ पैर धोके फेस धोके फिर फ्रेश तिलक लगाकर भगवान के अल्टर में पहले आचमन करना है, और फिर गुरु महाराज को प्रणाम करके भगवान की साज सामग्री निकाल सकते हैं। तो जो क्राउन पेन है जो भी आपको रेस्टिंग के पहले निकालना है, खास कर अगर हेवी क्राउन्स भगवान को डाले हैं उसको निकाल के रखना चाहिए, अगर टर्बन्स हैं तो निकालने की आवश्यकता नहीं, लेकिन टर्बन के ऊपर कोई हेवी पीसेस हैं मेटल पीसेस तो अगर निकाल के रख सकते हैं तो अच्छा है। जैसे किसी हमको भी नॉर्मल ऐसा सोना है तो हम लोग ऐसा हेवी स्टफ लेके सोते नहीं है ना, मोबाइल जेब से निकाल के रख देते हैं, घड़ी बाजू में निकाल के जेब तो रख सकते हैं, या कोई ऑफिस का टाई वगैरह सब निकाल के रख देते हैं फिर सोते हैं। तो वैसे भगवान को भी जितना आराम हो सोने सोते समय उतना अच्छा है, और मंदिर को फिर करना, स्वच्छ करना है। भगवान को रेस्टिंग देते समय एक फूल का पंगड़ी भी वहाँ पर रहना नहीं चाहिए, इतनी स्वच्छता वहाँ पर होनी, क्योंकि जब फूल वहाँ पर रहते हैं या खासकर दोपहर को रखे हुए फूल अगर रात को वहाँ रहते हैं तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो है वहाँ पर आ जाते हैं, कॉकरोच बढ़ जाते हैं, तो उससे पूरा अस्वच्छ हो जाता है। फिर हम लोग सोचते रहे रैट्स कहाँ से आ रहे हैं, कॉकरोच कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग स्वच्छता मेंटेन करते हैं तो इन चीज़ों का तकलीफ कम होगा। और सब करने के बाद मंदिर को स्वच्छ करना है, गीले कपड़े से हाथ स्वच्छ धोने हैं, फिर पानी बदलना है। जो लेडीज़ के लिए पानी रखते हैं कम से कम दो बार तो बदलना चाहिए। सब भगवान को सब उठाते हैं और भगवान को रात को सुलाने से पहले तीन बार करते हैं तो अच्छा ही है, लेकिन कम से कम दो बार तो होना चाहिए। तीन बार करना है तो दोपहर के समय में जब राजभोग हो जाता है और भगवान को सुलाते हैं तभी पानी चेंज कर सकते हैं। जब मंदिरों में चार बार करते हैं, भगवान को जब चार बजे उठाते तभी भी चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पर कम से कम दो बार तो घर में होना चाहिए। और फिर मंत्रोच्चार करके भगवान को रेस्टिंग करना है। तो वेकिंग अप के समय हम लोग गुरु महाराज को पहले जगाया था, तभी यहाँ सुलाते समय पहले भगवान को सुलाना है। आगच्छ शयनम स्थानम श्री कृष्णाय नमः। आगच्छ शयनम स्थानम, आगच्छ मतलब आइए, शयन मतलब सोने की जगह पे, स्थानम शयनम स्थानम सोने की जगह पे, तो आप कृपया सोने की जगह पे रेस्ट करने के लिए, विश्राम करने के लिए आइए। आगच्छ शयनम स्थानम श्री कृष्णाय नमः, भगवान के चरणों को स्पर्श करके मंत्र बोलना है। फिर बलराम जी के चरणों को स्पर्श करके आगच्छ शयनम स्थानम से बलरामाय नमः, आगच्छ शयनम स्थानम से सुभद्राय नमः, आगच्छ शयनम स्थानम से गौराय नमः, आगच्छ शयनम स्थानम से नित्यानंदाय नमः। और जब ये बोलते हैं, उनको मंत्र बोलते हैं, हमें ध्यान करना है कि अभी नित्यानंद प्रभु सो रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु आगच्छ शयनम स्थानम जब बोलते हैं तो चैतन्य महाप्रभु भी अपने बेड पे विश्राम कर रहे हैं, विश्राम करने वाले हैं। तो ऐसा वो मेडिटेशन होना चाहिए। इससे ये सब जो है मंत्र बोलते हैं या जो भी अर्पण करते हैं इसके पीछे बड़ा भाव है, वो भाव के साथ हमें ये सब सेवा करनी है। फिर अगच्छ शयनम स्थानम श्री परम गुरुवे नमः, अगच्छ शयनम स्थानम श्री गुरुवे नमः, सीक्वेंस उठाने के लिए असेंडिंग इसमें है और जब सुलाते हैं तो डिसेंडिंग इसमें है, ऊपर से नीचे आना है सुलाते समय, गुरु महाराज तक पहुँचना है। और उसके बाद फिर अभी सब लोग अपने अपने बेड पे सो रहे हैं लेकिन तुरंत नींद नहीं आ रही है। पर हम लोग जब फ्रेंड्स को मिलते हैं या कहीं भी जाते हैं, घर में भी बच्चों को सुला भी दो तो तुरंत आँख बंद कर दी, मतलब सोते नहीं है, बातचीत करते रहते हैं। तो वैसे भगवान भी सो गए लेकिन सोए नहीं है, आपसे उनको कुछ चाहिए क्या? जैसे माता यशोदा कृष्ण को सुला रही गोद में, लेकिन कृष्ण क्या है अभी आग बीच बीच में खोल देते हैं, बंद करते खोलते हैं, फिर माता क्या करते हैं लोरी गाना चालू कर देते हैं। माता जब लोरी गाते हैं लाला बाई, तो कृष्ण जो है सुनते सुनते, लोरी क्या है भगवान की ही लीलाओं का वर्णन है, भगवान के लीलाओं का गुणगान है, वो सुनते सुनते वहाँ पर कृष्ण सो जाते हैं। वैसे घर के जितने भी सदस्य हैं सब लोग अल्टर के सामने आकर अभी भगवान को सुलाया है, अभी जस्ट अल्टर बंद करना है, उसके पहले सारे घर के सदस्य एकत्रित आकर वहाँ पर कृष्ण बुक पढ़ सकते हैं, भले 10 मिनट क्यों ना हो। जब हम लोग मायापुर गए थे डेटी वर्शिप ट्रेनिंग के लिए तो पहले हमको पता नहीं था सब ऐसा होता है, तो हम लोग राधा माधव को सुलाने तक सब वहाँ रहते थे, फिर बाद में मतलब सो गए भगवान तो हम लोग बाहर आ जाते थे, फिर वापस 10 मिनट हो गए 15 मिनट हो गए जिनमें उसमें बाहर नहीं आए, तो मतलब क्या हो गया अभी तक क्यों नहीं आ रहे, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, मतलब क्या करते हैं अंदर। तो एक दिन बाहर आ गए फिर वापस हम लोग उधर रुक गए, मतलब देखते क्या करते 10-15 मिनट क्या होता है अंदर। तो बाद में देखा तो इस ग्रह जिन्यास को राधा माधव के सामने बैठ गए किताब लेकर और 10-15 मिनट चैतन्य चरितामृत पढ़ने लगे, कभी चैतन्य चरितामृत कभी भागवत कभी कृष्ण भू भगवान के सामने बैठकर पढ़ते हैं, तो इट्स लाइक सिंगिंग लालाबाय, भगवान को अपनी लड़ाओं का गुणगान सुनाना है। तो वैसे फिर घर में भी अगर वैसा वातावरण तैयार करते हैं तो सबको आदत लग जाती है, बच्चों को भी सोने से अच्छे। ऐसे भी बच्चे लोग कहते हैं कि हमको कुछ स्टोरी सुनाओ, स्टोरी सुनाओ, तो कृष्ण लीला रोज रात को पढ़ा के सुना सकते हैं उनके लिए एक, और घर में भी एक माहौल तैयार हो जाता, पवित्र माहौल तैयार हो जाता सोने से पहले। तो इस तरह से कृष्ण बुक पढ़ के फिर बाद में आप अल्ट्रा बंद कर दो, और भगवान अल्ट्रा बंद करके वहाँ का लाइट्स बंद करके भगवान को सुला दो। भगवान को सुलाने का विश्राम का विधि है, वापस रिपीट करना है इसको, सब लोग समझ गए। प्रणाम करना है, हाँ, सुलाने के बाद भगवान को प्रणाम करके फिर सब लोग पर्दा बंद कर सकते। आरती, तो ये जो आरती सेरेमनी है क्या है, जो आरती है एक वेलकमिंग सेरेमनी है। पूरा आरती का जो जो भी उपचार हम अर्पण करते हैं, वैसे बाहर देखा जाए तो सारे उपचार जो है जब महान व्यक्ति आते हैं उसके स्वागत के लिए किए जाते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी आ रहे हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आ रहे हैं, गौर निताई आ रहे हैं, राधा कृष्ण आ रहे हैं, अभी वहाँ पर खड़े हैं, उनका स्वागत करना है। गांव में भी जब कोई मंत्री आता है या कोई बड़ी व्यक्ति आती है तो ये सारे विधि करते हैं। तो एक वेलकमिंग सेरेमनी है आरती, इसलिए जब जो भी उपचार हम उसमें अर्पण करते हैं सारे स्वागत की विधि है। आरती में सबसे पहले क्या अर्पण होता है, कौन कहेगा? धूप, अगरबत्ती, और सबसे पहले शंख अर्पण करते हैं। तो शंख जो बजाते हैं वो क्या प्रतीक है? वो शिवलरी, जय जयकार। जैसे पुराने जो राजा महाराजा होते थे, जैसे राजा आ जाता है तो सब जो सेवक है क्या कहते हैं? राजा अधिराज महाराज पधार रहे हैं, और सारे बिगुल बजाते हैं, आवाज होता है, तुतारे बजाते हैं, तो ये जय जयकार। तो शंख निनाद जो है ये भगवान पधारे हैं उनका जय जयकार हो रहा है, और शंख निनाद जो है उससे जो भी अशुभ चीजें हैं वातावरण में वहाँ स्थान में सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो शंख निनाद से एक पवित्र वातावरण निर्माण करने के लिए, अशुभ चीज़ों को भगाने के लिए, और साथ साथ जो व्यक्ति हैं उनका जय जय का जय घोष करने के लिए शंख बजाते हैं। दूसरा क्या अर्पण करते हैं? धूप, अगरबत्ती अर्पण करते हैं, उससे सुगंधित वातावरण निर्माण करने के लिए इंसेंस अर्पण करते हैं। देखिए अभी कोई बड़ा उत्सव होता है उसमें भी सेंटेड वाटर स्प्रिंकल करते हैं, वो क्या है, जो भी मेहमान आ रहे हैं उनको स्वागत करने के लिए सेंटेड वाटर या सुगंधित वातावरण बनाना, या कोई महान व्यक्ति आ रहे, बड़े व्यक्ति आ रहे तो सारे रोड्स के आसपास में सुगंधित प्लांट्स रखेंगे, वहाँ पे वैसा वातावरण तैयार करेंगे, तो वेलकमिंग सेरेमनी है। सब दीप अर्पण करते हैं, धूप के बाद दीप अर्पण करते हैं। तो लैंप क्या है? अग्नि ये शुभ माना गया है, मंगलमय माना गया है। अग्नि में कुछ भी डालो तो जलकर भस्म हो जाता है, शुभ पवित्र बन जाता है। इतने सारे गंध भी रोड पे रहती है, सूरज निकलता है उसके धूप से सब कुछ सूख जाता है, पवित्र हो जाता है। तो वैसे अग्नि ये पवित्र है, शुभ है, मंगलमय है। इसलिए कोई भी व्यक्ति आता है, महान व्यक्ति आती है तो उसको अग्नि दिखाते हैं, दीप दिखाते हैं, ताकि उनका यहाँ आना मंगलमय हो। इसलिए श्री रामचंद्र जब 14 साल वनवास से आने के बाद अयोध्या वासियों ने उनके जीवन में फिर वापस कुछ अमंगल न हो, श्री रामचंद्र का यहाँ आना शुभ हो, मंगलमय हो, उनका भावी जीवन मंगलमय बने, इसलिए सारे अयोध्या में क्या किया, दीप जलाए। इसलिए उस दिन से उस दिन को नाम क्या पड़ा, दीपावली, क्योंकि अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र का स्वागत किया था, दीप जलाए थे, दीपावली। आज भी जो नया शादी होता है तो जो दूल्हा दुल्हन घर में आते हैं तो घर में पहले बार जब प्रवेश करते हैं तो कई जगह पे दीप आरती करते हैं, इसलिए नहीं कि वो भगवान है, उनका जीवन मंगलमय बनो इसलिए दीप दिखाते हैं, दीप जलाते हैं, इसलिए भगवान की दीप से आरती करते हैं। फिर भगवान को शंख में पानी दिखाते हैं। आप बोलेंगे किस लिए शंख में पानी दिखाते हैं, भगवान को जब आरती करते हैं शंख में हम लोग भगवान को पानी अर्पण करते हैं, ये क्या है, जो भी आपको याद है या पता है बोल सकता है, शंख में भगवान को पानी क्यों दिखाते हैं, पीने के लिए, स्नान करने के लिए, हाँ, और उसके बाद वस्त्र दिखाते हैं किस लिए, पूछने के लिए। तो बहुत बार यही लोगों का समझ होता है, अच्छा है वो भाव भी अच्छा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अर्घ्य क्यों दिखाते हैं, क्योंकि जब कोई महान बड़ी व्यक्ति आती है तो कोई थक के आते हैं तो इस शंख में जो अर्घ्य होता है, ऐसे आयुर्वेद में कुछ ऐसे वनस्पति हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं कि जो पानी में डालने से अगर वो पानी किसी के ऊपर छिड़को या उसको दिखा और वो अगर आप उंगली से अपने ऊपर छिड़क देता है तो तुरंत थकान दूर हो जाती है, फ्रेश ताजगी आ जाती है, इसलिए वो अर्घ्य दिखाते हैं। आजकल स्पोर्ट्स में वो स्प्रे होता है ना इमरजेंसी, तो तुरंत वो खाली किसको मोच आ गया तो स्प्रे मार दिया तो अपने आप कम हो जाता है, तो आजकल मेडिकल में भी वो है, तो आयुर्वेद में इससे ज़्यादा बढ़कर है, लेकिन आजकल वो मिलते नहीं प्लांट्स लेकिन ऐसे आयुर्वेद में इंग्रेडिएंट्स है कि वो पानी में डालने से वो खाली पानी अगर अपने चेहरे पे छिड़क दो तुरंत फ्रेश हो जाता है, थकान दूर हो जाती है। जैसे अगर कोई धूप से आ जाता है तो उसको गुड़ और पानी दे दो अच्छा लगता है, ठंडा पानी अच्छा लगता है, वैसे अर्घ्य विधि है ताजगी देने के लिए, थकान दूर करने के लिए। और जो वस्त्र दिखाते हैं उसका मतलब है, जब पहले शुरुआत में मैंने बताया था कि कोई बड़ा उत्सव होता है या कोई सभा होती है तो सभा के एंड में वो किसी कोई साधु हो या कोई चीफ मिनिस्टर कोई मिनिस्टर हो तो उनको क्या कहते हैं कि हम वस्त्र अर्पण करते हैं, शॉल अर्पण करते हैं, श्रीफल और शॉल अर्पण करते हैं, तो उसका स्वागत करने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए ये शॉल अर्पण करते हैं, वस्त्र अर्पण करते हैं। तो भगवान भी आ रहे हैं तो इसलिए उनको इस स्वागत का विधेय, भगवान महान हैं उनका स्वागत ऐसे चीज़ों से करते हैं, और फिर अंत में फूल अर्पण करते हैं। फूल भी एक सुगंधित वातावरण तैयार करने के लिए और समर्पित भावना, शरणागति दोनों कारण हैं। उसके बाद चामर अर्पण करते, एश चामर सेवा, तो चामर से एक तो ये राजशाही थाट, कोई राजा है जैसे पुराने इसमें देखा होगा राजा बैठा और दो दासी बाजू से चामर अर्पण कर रही है, तो एक राज वैभव दिखाने के लिए, भगवान कितने महान हैं आप स्वामी हो इसलिए दास के रूप में वो चामर करते हैं, सेवक के रूप में, राजा भगवान का एक राज वैभव दिखाने के लिए। और राजा को चामर क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या अर्थ होगा? अगर राजा यहाँ ऐसा कुर्सी पे बैठा है और यहाँ मक्खी आ गया, ऐसा खट करके मारा, यहाँ मारा, तो लोग बोले क्या राजा है मक्खी मार रहा है। इसलिए दासी चामर डुलाते हैं ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा मक्खी आसपास में न घूमे, हमेशा चामर डुलते रहते हैं ताकि राजा को दूसरा कोई चिंता नहीं, भले कोई सैनिक गोली नहीं मारेगा कम से कम मच्छर तो आगे काटेगा, तो वो भी राजा को दुख न हो, तो इसलिए चामर डुलाते हैं हमेशा आसपास में। तो ये राज वैभव, इसे चामर भगवान को अर्पण करते हैं। और फिर वेजन पंखा, मोर पी पंखा जो है अर्पण करते हैं, इसलिए ठंड हवा देने के लिए भगवान को। इसलिए जब ठंडी का मौसम होता है तो उस समय पंखा अर्पण नहीं करते हैं। आपके बॉम्बे में तो हमेशा गर्मी रहती है, लेकिन जहाँ पर ठंड ज़्यादा है तो ठंडी के मौसम में भगवान को पंखा नहीं अर्पण करते। तो ये उपचार हैं आरती में, क्यों हम लोग अर्पण करते हैं इसके पीछे ये मतलब है। तो जो भी हम लोग भगवान को आरती करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि जो उपचार अर्पण कर रहे हैं, तो जब धूप अर्पण करते हैं तो हमारा ये भाव होना चाहिए कि भगवान इस धूप का आनंद ले रहे हैं, ये सुगंध जो है भगवान को मिल रहा है, इस भाव से उसे अर्पण करना। या दीप अर्पण करते, भगवान आपका यहाँ आना मंगलमय हो, शुभ है, आप आइए। जैसे हर चीज अर्पण करते समय भगवान से उसका आदान प्रदान होना चाहिए। तो ये जो उपचार हैं कैसे पवित्र करें, तो अपने दाएं हाथ में लेकर बाएं हाथ से उसको तीन बूंद डालना है। समझो धूप है, धूप को हाथ में लेकर तीन बार हम उसको शुद्ध करके फिर दाएं हाथ में लेकर उसको अर्पण करना है। सब लोग समझे कि जो भी उपचार है, अगरबत्ती है या दीप है, पहले उसको बाएं हाथ में लेना है, बाएं हाथ में लेकर दाएं हाथ से तीन बूंद डालना है और फिर शुद्ध होने के बाद दाएं हाथ में लेकर बाएं हाथ में घंटी लेकर उसको अर्पण करना है। ये पवित्र करने की विधि है। और ये उपचार कैसे अर्पण करने हैं, ये चार्ट दिया गया है मेरे ख्याल से आपको, जो मैनुअल है उसमें में दिया होगा। जो उपचार हम अर्पण करते हैं उसका नाम दिया है, अगरबत्ती तो उसे एश धूप कहते हैं, दिया को एश दीप कहते हैं, अर्घ्य को इदम अर्घ्यम कहते हैं, वस्त्र को इदम वस्त्रम कहते हैं, फूल को इतानी पुष्पानी, चामर को एश चामर सेवा, पंखा को एश वेजन सेवा। और कैसे उसको आरती करते समय अर्पण करना है वो भी यहाँ पर बताया गया है कि इंसेंस है, धूप को पूर्ण शरीर भगवान के सात बार अर्पण करना है, जो दिया है उसको चरणों में चार बार, नाभि कमल दो बार, मुख कमल तीन बार, पूरे शरीर को सात बार अर्पण करना है, अर्घ्य को तीन बार मुख कमल, सात बार शरीर को, वस्त्र को केवल सात बार अपने पूर्ण शरीर को, फूल को फ्लावर्स एतानी पुष्पानी सात बार पूर्ण शरीर को, और चामर समय के अनुसार, आरती का समय अगर आपका 20 मिनट का है या 10 मिनट का है तो जितना समय बचा है उसमें थोड़ा थोड़ा समय चामर और वेजन अर्पण कर सकते हैं। तो आरती का जो क्रम है, जब हम लोग शंख बजाएं, अभी धूप को जलाए हैं, उसको तीन बार पांचपन पात्र से पानी लेकर डाले, उसको शुद्ध करके दाएं हाथ में लिए हैं, तो प्रथम हम गुरु महाराज को एक बार अर्पण कर एक राउंड करते हैं। कोई मंत्र नहीं बोलना है, गुरु महाराज को एक बार अर्पण करते हैं, परम गुरु को एक बार अर्पण करते हैं, फिर नित्यानंद प्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को, फिर सुभद्रा मैया, एक बार बलराम जी। जब कृष्ण के पास पहुंचते हैं तो पूरा आरती करना है, एष धूप श्री कृष्णाय नमः। पूरा अगरबत्ती कितना, सात राउंड है, तो पूरा सात राउंड जो है कृष्ण के लिए करना है। तो जब नीचे से हम ऊपर जाते हैं तो भाव क्या है उसमें, गुरु महाराज, परम गुरु, नित्यानंद, चैतन्य, इन सब से हम आशीर्वाद और कृपा लेते हैं, उनसे हम ब्लेसिंग्स एंड परमिशन कि हम कृष्ण की, जगन्नाथ की पूजा करने जा रहे हैं, कृपा करके आप हमें आशीर्वाद दो, परमिशन दो। और ऐसे एक एक बार दिखा, सबसे ब्लेसिंग्स परमिशन लेते हैं, कृष्ण के पास पहुंचते, कृष्ण से पूरा आरती करते, फिर बलराम जी के पास आते, बलराम जी को पूरे सात राउंड करते हैं, एष धूप श्री बलरामाय नमः, फिर वापस सेवन टाइम्स सुभद्रा, एष धूप श्री सुभद्राय नमः, फिर वापस चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, एष धूप श्री गौराय नमः, एष धूप श्री नित्यानंदाय नमः, एष, फिर नरसिंहदेव और तुलसी महारानी को तीन तीन बार करना है, नरसिंहदेव को तीन बार एष धूप श्री नरसिंहाय नमः, फिर तुलसी महारानी को एष धूप श्री तुलसी आय नमः, फिर परम गुरु को एष धूप श्री परम गुरु ए नमः सात बार, और गुरु को वापस सात बार एष धूप श्री गुरु ए नमः। गौर निताय को अर्पण कर सकते हैं, हाँ गौर निताय, अगर खाली आप पंचतत्व का ही डेटीज है तो पूरे पंचतत्व का अर्पण कर सकते हैं। तो समझे कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में ब्लेसिंग्स परमिशन लेना है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में जब नीचे आते हैं तो जगन्नाथ जी का प्रसाद बलराम जी के पास, दोनों का प्रसाद सुभद्रा के पास, सबका प्रसाद चैतन्य महाप्रभु, सबका प्रसाद फिर नित्यानंद प्रभु, फिर सबका प्रसाद नरसिंहदेव, फिर तुलसी महारानी, फिर सबका प्रसाद परम गुरु के पास, और सबका प्रसाद फिर गुरु के पास, और गुरु को अर्पण करने के बाद फिर हम वापस सामने जो प्रभुपाद के विग्रह हैं, फोटो हैं, उनको अर्पण करते हैं अल्टर के बाहर, और फिर सारे वैष्णव को एक बार दिखाते हैं। हाँ, राधा कृष्ण का डेटीज है तो राधा रानी को परमिशन ब्लेसिंग लेके फिर कृष्ण के पास पूरा आरती करना है, कृष्ण से आरती करते फिर राधा रानी, फिर नीचे आना है फुल आरती। राधा कृष्ण फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा फिर चैतन्य नित्यानंद, इस ऑर्डर में कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वो इसमें एक बार हमने जब जन्यासपुर से पूछा कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि राधा कृष्ण का अल्टर है, फिर गोर्णदेव का नीचे होना चाहिए, फिर जगन्नाथ का इधर नीचे होना चाहिए, बोले कि भाई यू डिस्क्रिमिनेटिंग, आप इसमें भेद क्यों कर रहे हो कि वही कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु है, वही चैतन्य महाप्रभु कृष्ण जगन्नाथ जी है, तो कोई इसमें कोई नीचे कोई ऊपर नहीं है। वो अल्टर के अरेंजमेंट के लिए कभी हो सकता है, लेकिन कोई नीचे ऊपर नहीं है, चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ जी है, तो एक लेवल में भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन आचार्यों ने हमें खाली ऑर्डर के लिए क्रम दिया गया है, उसमें कोई ये भगवान ऊपर है, ये भगवान नीचे, ऐसा कुछ नहीं। पंचतत्व में नहीं, नरसिंहदेव को अर्पण करना है अलग से, प्रहलाद महाराज की तरफ। फिर एष दीप, इसमें भी ऐसा ही, पहले ब्लेसिंग्स परमिशन लेकर हमें ऊपर जाना है, गुरु, परम गुरु, नित्यानंद, चैतन्य, सुभद्रा, बलदेव जी, जगन्नाथ जी, फिर राधा रानी, कृष्ण। वापस नीचे आते समय कृष्ण को पूरी आरती करनी है, चार दो तीन सात, चार बार चरण कमल, दो बार नाभि कमल, तीन बार मुख कमल, और पूरे शरीर को सात बार एष दीप। नीचे से ऊपर जाते समय खाली ये मूड होना चाहिए कि हम उनसे ब्लेसिंग्स परमिशन ले रहे हैं, तभी कुछ मंत्र नहीं बोलना, खाली हर ऐसे हमें ब्लेसिंग्स मांगना है, परमिशन मांगना है। लेकिन ऊपर से जब नीचे आते हैं तो फिर सब मंत्र बोलते जाने हैं, एश धूप एश दीप श्री कृष्णाय नमः, और फिर दीप अर्पण करना है, एश दीप श्री राधाय नमः, तो राधा रानी को दीप अर्पण करना है, एश दीप श्री कृष्णाय नमः बलराम जगन्नाथ जी को दीप अर्पण करना है, एश दीप श्री बलरामाय नमः। इस तरह से ऊपर से नीचे मंत्र बोलते, जो उपचार मंत्र है वो बोलकर, लेडीज का नाम बोलकर वो उपचार अर्पण करना है। हाँ, सारे डिडीज के लिए यही प्रकार है, ये चार्ट जो दिया गया है। खाली नरसिंह देव तुलसी महारानी को तीन तीन बार करना है, बाकी सब डिडीज के लिए, गुरु परम गुरु के लिए भी यही स्टैंडर्ड है। गुरु इसी तरह से अर्घ्य है, तीन बार मुकम्मल, सात बार संपूर्ण शरीर के लिए है। फिर वस्त्र से सात बार खाली शरीर के लिए, जाते समय ब्लेसिंग्स परमिशन, आते समय पूरा आरती करते हुए नीचे आना है। जब नीचे आएंगे आते समय ये पूरा जो ऑर्डर बताया गया है ये सारे उपचार उसी नंबर से ऑफर करने हैं। तो ये हुआ आरती सेरेमनी। इसके बाद आपको कुछ श्रृंगार के बारे में चर्चा करनी है या और कुछ क्वेश्चन आंसर करना है, टर्बन डालना है, अगरबत्ती 1, 3, 5, 7 और नंबर्स। क्या फूल ना हो, हो सके उतना होना जरूरी है। अगर फूल नहीं तो कम से कम आप तुलसी या मंजरी भी अर्पण कर सकते हैं, या तुलसी का पत्ता भी अगर आप अर्पण कर सकते हैं, मतलब ये कंसेशन नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी ना हो तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, या मन में फिर भगवान के अलग अलग फूलों का गुच्छा लेकर ऐसे भगवान को आग बंद करके ऑफर करो, वो हो सके उतना समय नहीं आ जाए तो अच्छा है। भारत में तो फूलों की कमी नहीं होनी चाहिए, कुछ भी ना कम से कम पत्रम पुष्पम, तो पत्र तो हो पुष्प नहीं हो तो। कुछ बहुत बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन थोड़ा मूड डिफरेंस है। हमें अपने जहाँ पे भी हम भक्ति की शिक्षा लेते हैं तो आचार्यों के मूड को स्वीकार करना पड़ता है, क्या करना चाहिए। तो जो बाल गोपाल की जो पूजा है ज़्यादातर पुष्टि मार्ग में होते हैं, जिसमें बताया जाता है कि कृष्ण बड़े हुए नहीं, क्योंकि कृष्ण अगर बड़े होते हैं तो कुरुक्षेत्र का युद्ध करते हैं, फिर रासलीला भी करते हैं, तो इतने सारे प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे, तो उससे अच्छा कि कृष्ण बड़े होते ही नहीं, तो बाल गोपाल ही रहें और बाल गोपाल की पूजा होती है, तो सारे झंझट से छूट जाते हैं, तो एक अलग मूड है। लेकिन जो गौड़ीय आचार्य हैं रूप गोस्वामी, इनका जो भगवान को वर्शिप करने का जो मूड है वो किशोर वय, जो राधा कृष्ण गोलोक वृंदावन हमेशा जो उनका स्थिर उम्र होता है वो किशोर एज है, 16 साल का जो उम्र होता है, उस स्तर के या वैसे स्तर में भगवान को पूजा करते हैं। इसलिए कृष्ण की अकेले पूजा नहीं होती, राधा रानी हमेशा साथ होती है। इसलिए रूप गोस्वामी जो आचार्य हैं वो अकेले कृष्ण की पूजा करने के लिए रिकमेंड नहीं करते हैं। किशोर अवस्था में उनकी पूजा करते हैं, राधा कृष्ण की पूजा होती है, खाली अकेले कृष्ण के लिए। तो मूड डिफरेंस है, कृष्ण की पूजा है लेकिन मूड डिफरेंस। अब लेकिन भारत में क्या होता है कि बहुत बार घरों में, मैंने सुना था कि सबके घर में बाल गोपाल है, मैं कैसे आ जाते, बोले नहीं शादी होते शादी में दे देते हैं तो शादी के साथ आ जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं उनको और कहीं दे दें, तो इसमें कोई बड़ा अपराध नहीं है। लेकिन इससे होता क्या है, तो उन्होंने किसी के यहाँ इतने बाल गोपाल देखे, बोले मेरे पास थोड़े बड़े होने चाहिए, फिर इतने लेके आए। फिर हम लोग ने पिछले बार वाड़ा से एक यात्रा लेके गए थे मायापुर में, तो किसी ने बिना पूछे इतने बड़े बाल गोपाल ले लिए 5 किलो के। तो मैं बोला कम से कम पूछना तो चाहिए था, अभी ठीक है छोटा सा किसी ने भेंट दिए हैं तो सेवा हो रही ठीक है, लेकिन हम लोग को आचार्यों ने गौर निताय दिए, खास करके गृहस्थ के लिए गौर निताय वर्शिप जो है मस्ट बताए गए बेस्ट। लेकिन खाली हम लोग यहाँ वहाँ सुनते हैं और एक दूसरे का देखते हैं, और कभी भी डेटी वर्शिप अगर करनी है तो अपने जो काउंसिलर है या जिनसे हम मार्गदर्शन लेते हैं उनसे पूछ कर करना अच्छा है। अगर डायरेक्ट गुरु महाराज से अगर किसी का संबंध है तो उनसे पूछ कर भी, क्योंकि सीनियर ड्यूटीज या अपने गुरु महाराज, स्पेशली गुरु महाराज के ब्लेसिंग से हमें डेटी वर्शिप में अंदर जाना चाहिए। नहीं एक्चुअली एक बार ऑफर हो गया तो उसको बाहर दे देना चाहिए, श्रृंगार के लिए अल्टर में सजाने के लिए अलग से पुष्प होने चाहिए। जो आरती में ऑफर होते हैं वो प्रसाद के रूप में बाहर जाते हैं या निर्माल्य में जाते हैं। अभी घर में है पुष्पों की बहुत कड़ी है या कमतरता है, तो वहाँ पे अगर डेकोरेशन के लिए नीचे कहीं सजा देते हैं ऑफर्ड फ्लावर्स, तो घर का स्टैंडर्ड थोड़ा अलग होता है। तो लेकिन डेटी वर्शिप जो टेंपल में होता है तो एक बार ऑफर हो गए तो बाहर प्रसाद के रूप में या निर्माल्य में जाते हैं। या मतलब प्लेट से बाहर जाने चाहिए, फिर अल्टर के पास में कहीं रख सकते हैं या बाहर भी रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। लेकिन प्लेट के ऑफर होने के बाद जो आरती प्लेट है उसमें कुछ भी ऑफर हुई चीज़ वापस प्लेट में नहीं आनी चाहिए, प्लेट के बाहर जानी चाहिए। तो अल्टर के पास में भी रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। मतलब सुगंध भगवान उसका आनंद लेते हैं, लेकिन अगर आप आरती के बाद ऑफरिंग करने वाले हैं तो अगरबत्ती वहाँ नहीं होनी चाहिए। अगर आप आरती पहले आरती की है ऑफरिंग किया है उसके बाद आरती करने वाले हैं तो अगरबत्ती वहाँ रहने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर बाद में वापस ऑफरिंग करने वाले आरती के बाद और अगरबत्ती वहीं जल रही है तो जब हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं तो जो पदार्थ बनाते हैं दाल राइस सब्जी जो भी है हर एक का एक स्वाद होता है, भगवान हर एक चीज़ का और पदार्थ का स्वाद चखते हैं। अगर उसमें कोई सेंट या अगरबत्ती लगा दो तो सब पदार्थों का स्वाद को मार देता है, तो उसमें भगवान वो भोग का स्वाद नहीं ले सकता, इसलिए उस समय भोग के समय वहाँ पर अगरबत्ती नहीं होनी चाहिए, बाकी समय अगरबत्ती रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं। वीक में भी ऐसा एक हो सकता है 5 हो सकता है, भगवान ये नहीं देखते कि आप 5 दीप अर्पण कर रहे हैं या 11 कर रहे हैं या 1 कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं, वो दीप के साथ भावना कितनी शुद्ध है कितनी समर्पित भावना है वो महत्वपूर्ण है। और बाकी अगर स्टैंडर्ड है जो मंदिर में 5 लैम्प का दिया होता है तो 5 लैम्प का हमेशा अर्पण करते हैं, या 1 लैम्प का होता है 1 लैम्प का कर सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 1 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। लैंप है 1 है 5 है 7 है 11 है, अलग अलग लैंप्स के दिए होते हैं। जब भी कोई साधना करते हैं या पूजा करते हैं तो हमारा स्पर्श जमीन को नहीं होना चाहिए, जब भी करते हैं तो हम क्योंकि जो भी एनर्जी तैयार होती है, शक्ति तैयार होती है, वो जमीन में चले जाते, ऐसा कहते हैं। इसलिए जब ध्यान करते हैं वो लोग भी हमेशा कुछ चटाई या कुशा चटाई लेकर बैठते हैं। ठीक है, टर्बन जरूरी है क्या?
नहीं,
इतना एक्सपर्ट नहीं। आपका घर का सिचुएशन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड है। अगर स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड है तो फिर जो भी डीटीज हैं, पंचतत्व, नरसिंहदेव परंपरा और शर गोस्वामी, ये होना चाहिए। लेकिन अगर घर का माहौल वैसा नहीं है, अगर घर के रिलेशन में अगर तनाव आने वाला है और ऐसी अवस्था में तो बाकी देवता भी वहाँ पर है, तो आप ये समझिए कि जब क्षीर सागर पे भगवान विष्णु अनंत शेष पे सोए हुए हैं, असहाय देवता जाकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि पृथ्वी पर बहुत बड़ा संकट आया, आप अवतरित होइए, तो सारे 33 करोड़ देवता जो है उनके आसपास में और भगवान विष्णु बीच में है। तो वैसे आप गौर नेता रख दो और बाद में आसपास में जो सारे देवता हैं, कुल दैवत हैं, वो आसपास में हैं, उनके सेवा, उनकी प्रार्थना करें, जो भगवान खा रहे हैं उनका प्रसाद वो लोग खा रहे हैं, तो अगर उससे घर शांत रहता है तो करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर बेस्ट स्टैंडर्ड है कि जो परंपरा और जितना अल्टर हो उतना हो, लेकिन अगर घर में प्रॉब्लम है और लोग नहीं मानते हैं तो बाकी रहने से, खाली जो मेन व्यक्ति है, जो भक्त है, उसका ये कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, देवताओं को भगवान के स्थान में नहीं लाना चाहिए या भगवान को उनके स्तर पर नहीं लाना चाहिए। इतना पक्का फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग जो है भक्त का होना चाहिए। तो इमरजेंसी के लिए अगर कोई बाकी देवता भी अगर वहाँ पे बैठ जाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉन्शियसनेस इज मैटर, कॉन्शियसनेस क्लियर होना चाहिए। परंपरा के साथ अगर अल्टर में जगह है तो परंपरा के साथ ही प्रभुपाद का भी रख सकते हैं, हाँ डीटीसी रख सकते हैं। अगर आपको इतना स्पेस है घर में, जैसे मंदिर में एक जगह पे अल्टर होता है और उनके सामने प्रभुपाद की डीटी होती है, तो इतना स्पेसियस है हॉल और इतना वहाँ पे प्रभुपाद की डीटी रखने के बाद भी लोग उनका इतना रिस्पेक्ट कर पाएंगे घर वाले सब, दो जगह पे डीटीज रखने से तो ठीक है, नहीं तो फिर एक जगह पे अल्टर में रखने से अच्छा है। माइक 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 लेंगे तो अच्छा, ठीक है।
किचन भी एक ही है,
सिंह भी गेम किए, उसमें सब लोग हो गए प्रशांत से ले रहे हैं, वो पत्तन सब एक ही जगह पे सब साफ हो रहे हैं, वहाँ पे ये सब कैसे फॉलो करें, कैसे फॉलो करें, क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, तो हम वहाँ पे ऑफरिंग तो वहाँ पे भी करेंगे भगवान जी को, भोगा बनाएंगे और उस वहाँ के जो बर्तन रहेंगे उन्हीं बर्तन में वो हमें जाने का भी अलग से बनाते हैं, हम भगवान के लिए भोगा बनाएंगे फिर और हमें जाने बनाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें गुरु जी, बर्तन भी अलग से ऐसा नहीं खाने की सकते अलग अलग बर्तन के वहाँ पर जाएंगे सबको भगवान जी के लिए, तो ऐसे में क्या करें
आपने कभी कोशिश की है करने की? ये इसको कहते हैं अनामिक भीति, अनामिक डर होता है ना कि जो चीज़ हुई नहीं है उसके बारे में एक डर रखते हैं हम लोग, तो वैसा ही एक कभी कभी कुछ करने से पहले ही इतनी सारी शंकाएं आ जाती है कि शायद हम लोग कर ही नहीं, ये मन का खेल होता है कि कभी कभी नहीं ये कर ही नहीं पाएंगे, हो ही नहीं सकता है, लेकिन इफ यू बी पॉजिटिव, अगर आप कि नहीं मुझे भगवान के सेवा के लिए मुझे करना है, तो भगवान वैसे पॉजिटिव थिंग्स भी जो है वहाँ भी बनते जाएंगे, भगवान का प्लेट तो आप साथ में ले जाएंगे, जो तो भगवान को भोग लगाना है वो तो सेपरेट है, भगवान का प्लेट धोकर अंदर लेके आ गए तो कितने दो मिनट में आप भगवान का प्लेट धोकर प्रसाद निकाल दिया, प्लेट धोकर अलग से आपने रख दिया, कितना समय लगेगा उसमें, वो जो उनका जनरल सिंक है उसमें डालने की भी आवश्यकता नहीं है, सिंपल चीज है, अगर ये भी अगर आप सेपरेटली कर सकते हैं तो बर्तन के बारे में उनको अगर सूचना दे दो कि ऐसा ऐसा है थोड़ा सा अगर आप एडजस्ट करेंगे हमारे लिए तो अच्छा है, कम से कम नहीं 100%, कम से कम 40% 30% तो लोग बदलेंगे, अगर वो दो तीन बार आप लेके जाएंगे तो हो सकता है उनका घर का पूरा स्टैंडर्ड चेंज हो जाए, जब हमने डेडीवरशिप शुरू किया घर में ऐसा तो नहीं 100% हम लोग का पूरा राइट स्टैंडर्ड था, हम लोग तो गलती करते यहाँ पर पहुँचे हैं, तो अगर हम लोग भी वहाँ जाते हैं और वहाँ पे थोड़ा 19-20 हो भी जाता है लेकिन वो लोग पॉजिटिवली भगवान को कुछ अर्पण करने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान उनको बुद्धि देंगे अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए, अच्छी चीज़ करने के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इतने निगेटिव ज़्यादा सोचते हैं कि शायद नहीं होगा, कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, तो उसमें फिर भगवान ये कहते हैं कि तुम्हें नहीं चाहते मैं क्यों जाऊँ वहाँ पर, तो भगवान वो आगे की बुद्धि भी नहीं देंगे, लेकिन अगर हम लोग डेयरिंग करेंगे जैसे प्रभुपाद कहते हैं अलवेज थिंक बिग, हमेशा कुछ बड़ा सोचना चाहिए, जहाँ पे जा रहे गांव को भक्त बनाने का सोचना चाहिए, तो फिर बाद में भगवान ये भी बुद्धि देंगे कि कैसे बर्तन अलग से करने हैं, क्या कैसे कैसे बनाने हैं, क्या मुश्किल है गाँव में जाके अगर मटके में आप बना दो, चार मटके ले लो, मटकों को मटके में बनाते हैं पता है, राइस बनाते हैं दाल भर जगन्नाथपुर में मटके में भोजन बनाते हैं, मटके तो चार मटके ले लो, चार मटके में रोज दाल बनाओ राइस बनाओ अलग से एकदम प्योर है, किसी का बर्तन यूज करने की आवश्यकता नहीं है उसमें, नहीं मतलब अगर चाहो तो बहुत कुछ हम लोग अलग से कर सकते हैं, सर ऑफकोर्स माता जी उनको ज़्यादा प्रैक्टिकली पता है, आपको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, मैंने तो जस्ट एक बताया कि ऐसे कर सकते हैं, इसलिए जन्यासपुर ने 5 ऑप्शन दिए थे, ये नहीं तो दूसरा भी करके देखो, लेकिन ये हो सकता है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स पॉसिबल। वैसे कलयुग में जो रिकमेंड किया आचार्य ने गौर नीता है सब, क्योंकि इस बद्ध अवस्था में हमसे कुछ भी अपराध हो सकते हैं। कई बार उत्साह में डेडीज लाते भी हैं, मैंने पर्सनली देखा है कि डेडीज लोग ले आए बड़े उत्साह से, बड़े प्रोग्राम देखे, फिर बाद में कुछ महीनों के बाद भाई बहन में झगड़ा हो रहा है, तू ऑफरिंग कर, वो बोला नहीं तू कर ना, बोला नहीं तू कर। तो कई बार थोड़ा स्लैकन हो जाता है स्टैंडर्ड्स, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। तो इसलिए जो गौर निताई हैं वो अपराध करने से पहले माफ़ कर देते हैं। जैसे धनंजय प्रभु को श्रील प्रभुपाद ने बताया था कि जो गौर निताई हैं आप, ये वृंदावन बताया था कि इसको मूर्ति बनाओ, विग्रह बनाओ आप, और संकीर्तन बस में इसको सेल करो। बोले कि गौर निता है ऐसे कैसे, कोई डॉल जैसा लेके जाकर शोकेश में रखेगा और चलेगा? इनको अगर आप शोकेश में भी रखोगे फिर भी घर में लेके आए हैं इसलिए कृपा दे देंगे। परम करुणा बहुदी जन निताय गौर चंद्र, इतने परम कृपालु अवतार है चैतन्य महाप्रभु गौर निताय। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद सारे आचार्य जो है गौर निताय रिकमेंड करते हैं। फिर भी किसी का अगर वैसा स्पेसिफिक भाव है या ये है तो अपने स्पिरिचुअल मास्टर से पूछ के वो ला भी सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल मास्टर नोज बेटर, उनको ज़्यादा पता है कि आपका स्तर क्या है, और वो जानते हैं और वो चाहते हैं कि आप ले आ सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम है उसमें, इट्स बिटवीन यू एंड स्पिरिचुअल मास्टर। सेम थिंग विद जगन्नाथ जी ऑल्सो, सेम थिंग, मेनली रिकमेंडेड इज गौर नेता है, बट स्टिल ड्यूटीज अपने काउंसिलर्स है या स्पिरिचुअल मास्टर है उसके उनसे रिकमेंड करके अगर वो ले आते हैं तो बिटवीन स्पिरिचुअल मास्टर एंड देम। या राधा कृष्ण ऑल डेडीज, सब डेडीज का जो स्टैंडर्ड्स है वो मैंने शुरुआत में बताया कि डेडीज जब हम घर में लाते हैं उनका उद्देश्य होता है कि डिसिप्लिन, अपने कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाने के लिए, जो बद्ध भावना है, शरीर भावना है, बॉडीली कॉन्शियसनेस है, उससे ऊपर उठाने के लिए तो डेडी वर्शिप है। तो जब तक हम लोग उसको हाई स्टैंडर्ड्स नहीं रखेंगे हम लोग, नहीं तो हम लोग भगवान को अपने सर पे लेके आएंगे बॉडीली प्लेटफॉर्म पे। हम लोग 7 बजे तक सो गए तो भगवान भी 7 बजे सो गए, हम लोग 12 के 1 बजे खा रहे तो भगवान भी 1 बजे खा रहे। लेकिन डेडीज के साथ वो लगाव तभी होगा जब टाइम टू टाइम और सिंसियरली हम लोग सेवा अर्पण करेंगे, तभी वो डेडीज के प्रति वो बंध तैयार होगा, बॉन्ड्स तैयार होंगे। तो किसी भी डेडीज में वो सिंसियर स्टैंडर्ड्स तो चाहिए, ऐसा नहीं कि गौर नीता डेडीज है तो कुछ भी करो तो चलता है, मतलब दे विल फॉरगिव ऑफेंसेस बट एट द सेम टाइम नॉट एबल टू गेट दैट रिलेशंस अगर हम लोग निग्लेक्टफुल रहेंगे तो। स्टैंडर्ड तो हर डेडीज से एक्सपेक्टेड है, स्पेसिफिकली लॉर्ड चैतन्य नित्यानंद प्रभु केम इन कलयुगा आचार्य दे रिकमेंड गौर नीता डेडीज। बाकी अपने अपने कॉन्शियसनेस के ऊपर, फीलिंग्स के ऊपर, भावनाओं के ऊपर है। क्या क्या आचमन का जो जल है, हाँ कोई हर्ज नहीं है, आचमन का पवित्र जल है उसको डालने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली जो क्लो पाउडर का जो जल होता है जो आचमन के लिए उपयोग करते हैं जिसमें लवंग पाउडर डालते हैं वो नहीं डालना चाहिए, क्योंकि लवंग जो बहुत हॉट रहता है, उसमें बहुत हीट रहता है, ऊपर पेड़ को जला देता है। तो लवंग पानी वाला जल जो है किसी पेड़ में नहीं डालना चाहिए। बाकी आचमन का बचाव है भगवान को स्नान करते हैं वो जल है डाल सकते हैं।
बोलो।
एक एक याद रखना कि हाथ ऊपर करे और फिर माइक वहां पहुंचा देना बाद में। हाँ, अगर मंगल आरती करते हैं तो मंगल आरती के बाद अगर आपने भगवान को अभिषेक किया, श्रृंगार किया है, तो श्रृंगार के बाद कम से कम छोटा भगवान का श्रृंगार आरती होना चाहिए। धूप और जो फ्लावर्स अर्पण करते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम जो गाते हैं, उतना छोटा आरती तो कम से कम होना चाहिए। भगवान को क्या, भगवान स्नान करके अच्छा वेशभूषा, अच्छा नया ड्रेस डाल के आए हैं, तो कोई तो उनको स्वागत करने के लिए होना चाहिए। दिस इज वेलकमिंग है। किसी का बर्थडे है और एकदम नया कपड़ा पहन के बाहर आ जाए और कोई कुछ बोले नहीं तो नर्वस हो जाता है, अरे क्या कोई बोला नहीं मेरा बर्थडे है करके। तो ऐसे भगवान के नया कपड़ा पहन के आए हैं तो समबडी शुड वेलकम हिम। प्रॉब्लम क्या है? ऐसा जरूरी नहीं। लॉर्ड इज पर्सन एट द सेम टाइम इज नॉट ह्यूमन बींग। तो ऐसा नहीं, अगर हम लोग भोजन के बाद तुरंत स्नान करते हैं तो हमें तकलीफ होती है, पर लॉर्ड डजंट मेक डिफरेंस। इसलिए हमेशा मंगल आरती के पहले भोग लगता है, मंगल आरती होती है, मंगल आरती के बाद फिर भगवान को अभिषेक होता है, खासकर छोटे राधा गोपाल गोपीनाथ जो है उनका अभिषेक होता है, फिर वापस डेली श्रृंगार होता है। इट्स अ डेली रूटीन, सो डजंट मैटर। समटाइम्स हम लोग इतना बॉडी भगवान को भी अपना इतने सर पे ले आते हैं कि अपने सारे बंधन भगवान को भी ला देते हैं। ग्रस्त के लिए हर एकादशी को एटलीस्ट करना चाहिए, अगर नहीं तो फिर उसका जो वीकली ऑफ है संडे वगैरह तभी कर सकते हैं, डिपेंड्स। तो कम से कम एकादशी के दिन या नहीं तो फिर वीकली ऑफ के दिन, तो जैसा उसका समय है, तो हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार तो ग्रस्त चेंज होना चाहिए। टू ऑफरिंग्स एंड वन आरती, कम से कम दो रोज भगवान को भोग लगना चाहिए। तीन लगे, चार लगे, अलग है, लेकिन कम से कम दो भोग लगना चाहिए और एक आरती घर में होनी चाहिए। क्योंकि और जब हम लोग संकल्प करते हैं, जब भगवान के विग्रह को ले आते हैं, आते समय हमने कुछ संकल्प किया है, सोचा है कि भगवान आने के बाद मैं ऐसा सेवा करूँगा, तो संकल्प कम से कम उतना तो सेवा चलते रहना चाहिए। हम लोग जब लाते हैं भगवान को तो सोचते हैं ना कि ऐसा आरती करूंगा, ऐसा भोग लगाऊंगा, ये करूंगा, तो वो जो संकल्प किया है उससे नीचे नहीं उतरना चाहिए, तो इतना तो शामिल होना चाहिए। नहीं नहीं, जो घर में बनाते हैं खासकर गृहस्थ के लिए, जो भी घर में बनता है भगवान को ऑफर कर सकते हैं। ऐसे स्पेसिफिकली लेडीज के लिए अलग से बना के फिर बाद में घर के लिए अलग से, शायद सबके लिए मुश्किल नहीं हो, मुश्किल हो सकता है। तो जो भी घर में बनता है, या स्पेसिफिक किसी के यहाँ पे कोई स्पेशल गेस्ट है या समय है, आज कुछ एक्स्ट्रा मैं भगवान के लिए बनाना चाहता हूँ, नो प्रॉब्लम। कम से कम मिनिमम जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन होना चाहिए, तो आज में एलाबरेट आप कितना भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम।
जो रूम में हमने टीवी रखे हैं वो रूम में प्रसाद दे सकते हैं या फिर सो सकते हैं।
प्लेस मैनेजमेंट और होम मैनेजमेंट मैंने कभी किया नहीं तो, लेकिन बॉम्बे का जैसे अभी मैं वहाँ जहाँ वाड़ा में रहता हूँ तो लोगों के इतने बड़े बड़े घर होते हैं, एक एक का जो हॉल है इतने बड़े हॉल होते हैं और बाद में इसके आधे साइज के बेडरूम्स होते हैं, तो ऐसे इसमें उनको बेडरूम में भी रखे तो वापस उसमें दीवार डाल के भगवान रह सकते हैं। लेकिन बॉम्बे में एग्जैक्टली पता नहीं कि क्या सिचुएशन है, लेकिन जहाँ पर डेडीज है पवित्र होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए वहाँ पे, खास करके डेडीज को ऐसे ज़्यादा बार बार डिस्टर्बेंस हो, बहुत ज़्यादा मेहमान आते हैं, दिन रात बातचीत चलती है या खेल कूद रहता है बच्चों का, तो भगवान को ऐसा बार बार डिस्टर्ब ना हो, तो ऐसे सेफ जगह अगर रखो तो अच्छा है, फिर हॉल में भी हो सकता है या बेडरूम में हो सकता है, लेकिन बेस्ट इज जहाँ पे डेडीज सबके लिए एक्सेस हो। अगर आप बेडरूम में रखते हो तो हर कोई आदमी बेडरूम में आके दर्शन करना मुश्किल है, नहीं तो फिर आपका सबका बेडरूम का दर्शन देना पड़ेगा। तो ऐसी जगह हो कि जहाँ आसानी से जो भी गेस्ट आ जाए, ड्यूटीज आ जाए, भगवान के दर्शन कर सके, दे फील कंफर्टेबल, ऐसी जगह हो। लेकिन अगर मुश्किल है आप जहाँ पे भी रहो घर में भगवान रहेंगे।
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि अभी हम घर में लेके आना चाहते हैं, बट ये संकोच है कि सेवा कर पाएंगे कि नहीं। तो मेरा प्रश्न अभी जैसे प्रभु जी ने वो प्रश्न पूछा कि मिनिमम सेवा क्या करनी होती है,
तो जैसे पहले मैंने बताया कि कम से कम दो ऑफरिंग होनी चाहिए और एक आरती होनी चाहिए, और वीक में या 15 दिन में उनके ड्रेसिंग कम से कम करना चाहिए, इतना मिनिमम स्टैंडर्ड है। आदमी इसको आप जितना एलोबरेट कर सको, तो भगवान को उठाना है, जगाना है, मतलब गृहस्थ के लिए एक्चुअली डेडी वर्षे मतलब ये एक नॉर्मल होना चाहिए, एक रेशनल फील कि ऐसा कुछ बहुत हीवी मेरे ऊपर आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों को संभाल रहे हैं, पति को संभाल रहे हैं, तो उसमें और एक दो लोग घर में बढ़ गए तो भी घर में एक मेहमान आ जाता है, इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। तो वैसे घर में डेटीज हैं तो ऐसा एक नॉर्मल रूटीन है, वो सबको घर में भोग बनाया तो चलो भगवान को 5 मिनट के लिए भगवान को भोग धरा दिया, बच्चों को नहला रहे, उनको कपड़े पहना रहे तो भगवान को भी कपड़े पहना रहे, भगवान का भी स्वीकार कर रहे हैं, तो गृहस्थ के लिए एक बड़ा आवश्यक चीज़ है। अगर गेस्ट वापस नहीं आने वाले हैं या कई महीने कई साल अगर वो नहीं आने वाले हैं, अगर आपको दर्शन देना है खेल भगवान को भोग लगाना है, अच्छा अगर ऐसे शॉर्ट ऐसा छोटा मोटा कुछ अगर ऐसा है बच्चों को कुछ खिलाना है, शरबत देना है या कुछ ऐसा है, तो आप किचन में भी भगवान की फोटो रख सकते हैं और उनको भी वहाँ ऑफर कर सकते हैं। ऐसा इमरजेंसी बार बार अगर भगवान को उठाना जगाना अगर मुश्किल है, लेकिन अगर गेस्ट हैं जो बार बार नहीं आने वाले हैं, उनको दर्शन देना है, उनको प्रसाद भगवान का खिलाना है, तो खुलने से भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है या कोई तो बड़ा अपराध नहीं है। खास घर में, मंदिर में एक बार ऐसे कई साल पहले 90s में एक पुजारी थे, वो गोपीनाथ का कर्टन बंद कर रहे थे, एक बज गया, एक व्यक्ति बहुत ही मतलब दूर से आए थे, दूसरे शहर से आए थे, जो पहले गोपीनाथ को बार बार मिलते थे, कई दिनों के सालों के बाद आए और फिर वापस वो जाने वाले थे, तो जैसे वो हॉल में पहुंचे कर्टन बंद हो गया, तो बहुत उनको दुख हुआ और वो पुजारी से रिक्वेस्ट करने लगे, प्लीज जस्ट वो मंदिर में पैर रखे और पर्दा बंद हो गया, बोले प्लीज मेरे को दर्शन दो, फिर नहीं नहीं पर्दा बंद हो गया। तो भक्ति अनुसार महाराज भी वहाँ थे, वो भी आ गए एकदम नए नए गोपनाथ की शुरुआत थे बिल्कुल, तो वो भी आ गए। उन्होंने भी उनको रिक्वेस्ट किया, बोले नहीं भगवान के लोगों के नौकर है क्या, नहीं खुलेगा दर्शन, तो दर्शन नहीं खुला, तो बड़ा दुख हुआ। फिर वापस जब जुनेद राधा स्वामी से महाराज से जब चर्चा हुई कि ऐसे समय क्या करना चाहिए, जस्ट बंद हुआ है बीच में नहीं, दो घंटे के बाद नहीं दर्शन नहीं खुलना, लेकिन बीच में अगर ऐसा होता है इमीडिएट पर्दा बंद होते, महाराज बोले अगर मैं होता पूजा तो मैं खोल दिया होगा, बट ऑल बीन देयर बट ओपन द दर्शन। मतलब जरूरी है कि अपना स्टैंडर्ड्स बहुत फिक्स होना चाहिए, एट द सेम टाइम डीटीज हैज रेसिप्रोकेशन विद द डिवोटीज, वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ समय है कि लोग वापस नहीं आने वाले हैं या बहुत सालों के बाद शायद वो लोग आएंगे, वो दर्शन नहीं होंगे, तो हो सकता है खुलने से भगवान ज़्यादा प्रसन्न होंगे। लेकिन ऐसा कि वो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं या कल भी आने वाले हैं, ये जरूर नहीं कि वो पर्दा खोल के सब कुछ करना चाहिए, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। क्या प्रश्न है? सुबहदार के सर पे जो हार डाला गले में होना चाहिए कि सर पे होना चाहिए? गले का हार गले में होना चाहिए, सर का सर पे होना चाहिए। मैंने देखा नहीं लेकिन इसलिए बता रहा हूँ कि गले का हार जो गले के लिए बनाया गले में होना चाहिए, सर के लिए जो बनाया सर पे होना चाहिए। आचमन क्लो पाउडर लौंग पानी जो है वो मुखवाश की तरह काम करता है, या खास करके फ्रेशनर जो जो भी हम लोग दंत मंजन वगैरह जो भी सुबह यूज़ करते हैं उसमें सब में लौंग होता है, उससे इसलिए अपने दांतों को हम लोग जब उससे घिसते हैं तो ताजगी आती है, फ्रेश लगता है, इसलिए भगवान को भी सुबह सुबह लौंग का पानी देता है सुबह खाली उठाते पाते समय। जब वैसे तो मंदिर में जब भगवान को भोग लगाते हैं तभी भी आचमन अर्पण करते हैं, उसमें भी देते हैं, घर में इतना जरूरी नहीं, घर में खाले इदम आचमनियम, इदम आचमनियम श्री कृष्णाय नमः। हाँ, फेस को दिखा मुख की तरफ दिखा के इदम आचमनियम बोलना। तभी जो श्रृंगार का विधि है उसमें कितने लोगों के पास गौरनिताय डीटीज है और कितने के पास जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है? जो मैनुअल दे रहे हैं इसमें पूरा स्नान का विधि है, कैसे भगवान के विग्रह को श्रृंगार करने से पहले तो सारी सामग्री को इकट्ठा करना है, उपादान, और फिर आचमन करना है, इसे कहते हैं भूत शुद्धि। आचमन करके जो मंत्र है उसको बोलना है, और जो भी साज सामग्री है डेडीज के लिए उसके लिए टॉवेल्स लगते हैं, स्नान जल लगता है, या फिर ज्वेलरी चाहिए, टैग पिंग्स टर्बन्स के क्लोथ्स, ये सब कुछ जो है हमें इकट्ठा करके रखना चाहिए। एक बार आप वर्शिप के लिए बैठ गए, अभिषेक करने बैठ गए, तो भगवान का श्रृंगार होने तक उठना नहीं चाहिए, एक जगह पर जब ऐसे सारा तैयारी करके बैठना चाहिए, गौरनिताएं हो, जगन्नाथ जी हो, जो भी हो, इतना तैयार करके बैठना चाहिए कि एक बार वर्शिप शुरू कर दी तो कंटिन्यूस वो चलते रहना चाहिए। और साथ साथ अगर आपके पास ब्रह्म संहिता है या कोई भजन्स है वो भी आप गा सकते हैं, या तो फिर आप किस पे लगा के उसको सुन सकते हैं, लेकिन वो माहौल जो है बहुत पवित्र बनाए रखना चाहिए। तो विग्रहों के जो आभूषण, भगवान के वस्त्र, मोरपंख, मुकुट, पगड़ी का कपड़ा और पुष्पहार, चंदन लेप, भगवान का जब श्रृंगार होता है तो श्रृंगार के बाद तुरंत भगवान को तुलसी पत्र, चंदन को चंदन में डुबाकर तुलसी पत्र भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। तो स्नान करने से पहले तो भगवान को स्नान पात्र में रखना है। पहले आपने आचमन कर दिया, सब कुछ उपादान सब चीज़ें इकट्ठे कर दी, स्नान पात्र में रखकर भगवान को आप वस्त्र निकाल दें और फिर शंख से विग्रहों के ऊपर थोड़ा सा जल डालें। भगवान को और कुछ लगाने से पहले, ये खाली गौरनिता के लिए बता रहा हूँ, जगन्नाथ के लिए आपको जल डालना नहीं है। शंख से थोड़े गौरनिता के दोनों के ऊपर जल डालना है, फिर गोपी चंदन जो तिलक लगाती वो गोपी चंदन, और जो सैंडलवुड होता है वो दो लकड़ी घिस के उसका पेस्ट बना के रखना है, ऐसा जो मार्केट में मिलता है वो पाउडर नहीं, तो लकड़ी को घिसना है और उसका जो पेस्ट वो आधा और गोपी चंदन आधा, वो दोनों का मिक्सचर लेकर बनाकर कुछ कम से कम 15-20 मिनट तो दोनों को साथ में ऐसा पेस्ट जैसा बनाकर रखना चाहिए ताकि वो दोनों का मिक्सचर अच्छा बन जाए। और फिर जब डेडिस को थोड़ा जल डाल के फिर बाद में कॉटन से वो चंदन का जो लेप है पूरे भगवान के शरीर पे लगाना है, ऐसा पूरे खासकर जो आईब्रोज हैं, तिलक है, जहाँ पर पेंटेड पार्ट्स हैं उसमें ज़्यादा घिसना नहीं है, लेकिन बाकी पार्ट्स में अच्छा से पूरा लेप लगा कर पतला लेयर ऐसा लगा, जैसे हम लोग उपटन वगैरह लगाते हैं स्नान करते समय, वैसे पूरे शरीर को लगाना है। दोनों को लगाने के बाद फिर जो अपने चारों उंगलियां डेडिस के पीछे रखकर जो अंगूठा है उसमें पतला कॉटन लेकर डेडिस को जो पेस्ट है उसके ऊपर पॉलिश करना है। जितना जितना आप पॉलिश करोगे उतना काला स्टफ जो है सब बाहर आ जाएगा, खास करके इस एरिया में जहाँ सी शोर है वहाँ पर पूरा सॉल्टी वेदर है, तो ब्रास डेडिस जो है तुरंत ब्लैकिश हो जाते हैं, जब आप स्नान कराओगे तो बहुत ब्लैक स्टफ जो है बाहर निकलेगा, जितना ब्लैक स्टफ निकलेगा उतना डेडिस शाइन होगा, लेकिन वहाँ पर दो दिन के बाद वापस वैसा हो जाता है। लेकिन इसलिए लेमन इमली वगैरह नहीं लगाना है और जल्दी ज़्यादा डेडिस ब्लैक हो जाते हैं, इसलिए गोपी चंदन और जो चंदन है दोनों का मिक्सचर करके दोनों के मिक्सर से चार उंगली पीछे रखकर, क्योंकि आप चार उंगली अगर पीछे रखते हैं और अंगूठे से खींचते हैं तो पूरा ताकत मिलता है और पूरे ताकत के साथ डेडिस को पॉलिश करना है। तो दोनों डेडिस को पॉलिश करने के बाद फिर वापस शंख से डेडिस के ऊपर पानी डालना है ब्रह्म संहिता बोलते बोलते, और फिर जो कॉटन है थोड़ा सा कॉटन लेकर पानी में डुबाना है उसको स्नान जल में, और वो जो डैम कॉटन है पूरे डेडिस के ऊपर घुमाना है, जहाँ जहाँ चंदन स्टक हुआ है, चिपका हुआ है, सब जगह पे वो डैम कॉटन जो है सब पानी उसे पिघल रहा है, वो पूरा कॉटन को जब हम लोग पूरे शरीर में घुमाएंगे तो पूरा कॉटन जो चंदन पेस्ट है वो ढीला हो जाएगा शरीर से। एक दो बार आप करेंगे, एक कॉटन से पूरा चंदन ढीला कर दो, फिर वापस शंख से पानी डालो, फिर वापस एक बार कॉटन से, खास करके जो उंगली के बीच में पार्ट है, गले में है या अलग जो जहाँ जहाँ बहुत स्मॉल स्मॉल गैप्स हैं वहाँ पे जैसे जैसे आप ये कॉटन घुमाएंगे वैसे पूरा चंदन निकल जाएगा। ऐसा करते करते एक दो बार कॉटन घुमाने के एक दो बार शंख से पानी डाल के पूरा डेडिस जो है क्लीन हो जाता है, खास करके जो स्मॉल पार्ट्स हैं उसमें चंदन नहीं रहना चाहिए। ऐसे करते हैं, पूरे लेडीज को क्लीन करना है ड्राई क्लॉथ से, उनको पूरा वाइप करने के बाद चरणों में तुलसी और चंदन अर्पण करने, फिर शर्ट डालो, धोती डालो, आभूषण ज्वेलरीज डालो और भगवान के पुष्पहार डाल के उनका श्रृंगार बाल डाल के फिर पगड़ी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये भगवान का अभिषेक करना है चैतन्य महाप्रभु को। और बाकी जगन्नाथ जी का जो अभिषेक है उसमें तो हम खाली ड्राई कॉटन से या ड्राई कपड़े से क्लीन करना है जगन्नाथ जी को और फिर वापस ड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो इसमें कोई प्रश्न है श्रृंगार में? स्नान यात्रा के समय जगन्नाथ जी का पानी के साथ अभिषेक होता है, प्योर वाटर। जब भी नए लाएंगे तभी भी हो सके उतना, चरणों में उनको चाहिए तो आप दूध दही हनी डाल सकते हैं, लेकिन पूरे बॉडी के ऊपर जो है प्योर वाटर से अभिषेक करना सेफ साइड है। ऑलरेडी किसी ने नहीं, ऑलरेडी वेलकम उनका हो चुका है, फिर भी आपके घर में वो ला रहे हैं तो आपके घर में अगर उनको वेलकम करना है तो आप एटलीस्ट भक्तों को बुलाकर कीर्तन करके उनका वेलकम कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना पेशेंस रखा और इतना समय दिया। और भी कोई प्रश्न है तो मैं यहाँ बैठा हूँ थोड़े समय के लिए, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी है। प्रसाद के बाद इतना समय बैठे रहना बड़ी तपस्या, और आप लोगों ने इतनी तपस्या की है। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 राम।
हरे कृष्णा, एक अनाउंसमेंट, इतना अच्छा सेमिनार सुनने के बाद कई भक्तों को प्रेरणा मिली होगी। तो यहाँ की जो जगन्नाथ जी है उनके लिए कुछ सेवा है, हार बनाने की सेवा, उनकी ड्रेसिंग की और भगवान को व्यंजन बनाने की। तो पीछे किशोरी माता जी बैठे हैं तो उनका अपना नाम लिखवा सकते हैं। हरे कृष्ण।